नमः विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने नमस्ते सारस्वतदेवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादे पाश्चात्यसतारिणे नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्विषे नमः श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले सोयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम् जयतां सुरतौ पङ्गोर्मम मन्दमतिर्गति मत्सर्वस्वपदाम्भोजौ श्रीराधा मदनमोहनम् यत्कीर्तनं यत्स्मरणं यदीक्षणं यद्वन्दनं यच्छ्रवणं यदर्हम् लोकस्य सद्यो विधुनोति कल्मषम् तस्मै सुभद्रश्रवसे नमो नमः वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः वैष्णवेभ्यो नमो नमः यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातरया जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदोस् तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे ओम नमो भगवते वासुदेवाय वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय अथ चतुर्विंशोऽध्यायः श्रीशुक उवाच भगवानपि तत्रैव बलदेवेन संयुतः अपश्यन्निवसन् गोपान् इन्द्रजागकृतोद्यमान्। सब लोग पहले ग्रंथ देखिए पढ़िए। आप क्या कर रहे हैं? ग्रंथ देखिए पढ़िए। भगवान अपि तत्रैव बलदेवेन संयुतः अपश्यन्निवसन् गोपान् इन्द्रजागकृतोद्यमान्। तदभिज्ञोऽपि भगवान् सर्वात्मा सर्वदर्शनः प्रश्रयावनतो पृच्छत् वृद्धानन्दपुरोगमान् कथ्यतां मे पितः कोऽयम् संभ्रमो वा उपागतः किं फलं कस्य च उद्देशः केना वा साध्यते मखः। एतद् ब्रूहि महान् कामो मह्यं शुश्रूषवे पितः। नहि गोप्यं हि साधूनां कृत्यं सर्वात्मनामिह। ज्ञात्वा ज्ञात्वा च कर्माणि जनोयम् अनुतिष्ठति। कौन छोटा? अच्छा, ये असल में एक जगह लिखा है इसलिए छोड़िए। अस्त्यास्वपर दृष्टि नाम अमित्र दास्तविद्विषाम् उदासीनोरिवद्वर्ज्य आत्मवत् सुहृदुच्यते। ज्ञात्वा ज्ञात्वा च कर्माणि जनोयम् अनुतिष्ठति। विदुषः कर्म सिद्धि स्यात् तथा न विदुषो भवेत्। तत्र तावत् क्रियायोगः भवतां किं विचारितम्। अथवा लौकिकस्तन्मे पृच्छतः साधु भण्यताम्। अभी भगवान बात कर रहे नंद महाराज से, तो इसका अर्थ मैं समझाना चाहता हूँ। अर्थ समझ लेने पर आवृत्ति करने में आनंद आएगा। पहले श्लोक से हम बता रहे, ध्यान से देखिए। भगवान अपि तत्रैव बलदेवेन संयुतः, भगवान भी बलराम जी के साथ वहीं ब्रज में रह रहे थे, तो रहते हुए उन्होंने गोपों को देखा कि ये लोग सब इंद्र यज्ञ के लिए तैयारी कर रहे हैं। पहला श्लोक में ये बात बताई गई, तो ध्यान रखिए। ये सब ताली पीटना तमाशा नहीं करना चाहिए कथा में। कोई नेता का भाषण नहीं होने जा रहा है। भगवान भी बलराम जी के साथ ब्रज में रहते हुए देखे गोपों को क्या करते हुए। इंद्र जग कृतोद्यमान, इंद्र यज्ञ के लिए सब तैयारी चल रही थी। तद अभिज्ञोपि भगवान सर्वात्मा सर्वदर्शन। दूसरा श्लोक देखिए, किताब पर देखना है, भागवत का श्लोक कृष्ण का स्वरूप। तद अभिज्ञ है अपि, इन सबके ज्ञाता हो करके भी, क्योंकि भगवान है वे, सबके आत्मा है, सब कुछ देखते हैं, जानते थे कि इंद्र पूजा की तैयारी कर रहे हैं, फिर भी गोप लोगों की मीटिंग थी तो प्रश्रयावनतः विनय से झुक करके नम्र वाणी में भगवान पूछे। नंद पुरोगमन वृद्धान, बड़े अनुभवी लोग, बड़े बूढ़े थे, जिसमें नंद बाबा सबसे बड़े थे, तो उनसे पूछे हाथ जोड़कर। कथ्यताम में पिता कोयम, क्यों नहीं श्लोक देखते हैं आप लोग? आश्चर्य की बात है। श्लोक देखने के लिए मैं कहा ना, कथ्यताम में पिता है, मेरे पिताजी कथ्यताम, आप कहिए। कह अयम संभ्रमो व उपागत, ये कौन सी घड़बड़ाहट जल्दीबाजी आप लोगों को हो रही है? कोई लगता है बहुत बड़ा काम करने जा रहे हैं आप लोग, इसका क्या फल है और किसके लिए किया जाता है और किन वस्तुओं से यज्ञ किया जाता है? नहीं, जब भगवान ने पूछा कि पिताजी क्या है, कोई बहुत बड़ा काम होने जा रहा है, सब लोग दौड़ रहे हैं, सामान जुटा रहे हैं, इधर कुटाई पिसाई ये सब चालू है, क्या हो रहा है? तो बाबा ने कहा, नंद बाबा ने, अरे यज्ञ हो रहा है। यज्ञ हो रहा है तो भगवान पूछते हैं किम फलम, इस यज्ञ का क्या इसे लाभ क्या है, फायदा क्या है और किसके लिए किया जाता है यज्ञ, देवता कौन होगा और किन वस्तुओं से ये यज्ञ पूरा किया जाएगा। केन वा साध्यते मख, ये बात कुछ गोपों ने ऑब्जेक्शन किया कि इस बच्चे को क्या जरूरत है पूछने की, बलराम जी भी थे और भगवान भी थे। तो किसी ने कह दिया कि जाओ खेलो, यज्ञ के बारे में पूछ रहा है, लड़के को क्या जरूरत है सब जानने की पूछने की। तो कहते हैं कि एतद् ब्रूहि महान कामो, हमें महान इच्छा है सुनने की, मह्यम सुश्रु सवे पिता। तो गोपों के तरफ संबोधन न करके अपने पिता को ही बार बार कह रहे हैं, पिताजी हमें इसको सुनने की बड़ी लालसा है, सुनेंगे जानेंगे तब ना आपके बाद हम करेंगे इस यज्ञ को। आखिर आज बच्चा है, एक दिन सयाना होंगे, ये काम हमको भी करना होगा, इसलिए हमें बहुत इच्छा है सुनने की। एतद् ब्रूहि, इसको बोलिए आप, महान कामो मह्यम सुश्रु सवे पिता, हमें सुनने की बड़ी लालसा है इसलिए आप कहिए। और इतना कह करके जब भगवान बंद किए तो कुछ गोप लोग ऑब्जेक्शन किए, सभी बातें बच्चों को क्या बताना है, क्या समझेगा, क्या हो रहा है, ये हो रहा है, जाओ भागो। सबसे बात नहीं कहनी चाहिए। तब कहते हैं भगवान, नहीं गोप्यम ही साधु नाम कृत्यम सर्वात्मनाम अस्त्य स्व पर दृष्टि नाम अमित्रो दास्त विद्विषाम उदासीन और इवर वर्ज्यम आत्मवत सुहृदोच्यते। जो साधु प्रकृति के लोग हैं, सीधे साधे हैं, सबका हित करने वाला काम करते हैं और जो सबके आत्मा हैं, अपने आत्मा जैसे सबको समझते हैं, जिनके दृष्टि में कोई अपना है शत्रु है इस ये दृष्टि नहीं है, और जिनका न कोई मित्र है न कोई उदासीन है न उनके द्वेष का कोई पात्र है, ऐसे लोगों के लिए कोई भी काम गोपनीय नहीं होता है, कोई बात छिपाते नहीं है। छोटा सा बच्चा अभी सभा में जाकर फिलॉसफी बोल रहा है, छिपाया नहीं जाता है जो अच्छे लोग हैं। अच्छा, जो उदासीन है, उदासीन का अर्थ होता है दोनों के बीच में, उससे डर रहता है भेद खुलने का, तो इसीलिए वो तो अरिवत वर्जम, वो तो दुश्मन की तरह उसे बचना चाहिए, उदासीन है तो उसे शत्रु की तरह बचना चाहिए। और आत्मवत सुहृद उच्चते, जो सुहृद है अपना है, जैसे मैं आपका पुत्र हूं, अपना बिल्कुल व्यक्ति है, तो वो तो आत्मवत उच्चते, वो तो अपना स्वरूप ही है, उसे कोई बात छिपाई नहीं जाती। ये कह करके फिर कहते हैं, पिताजी ज्ञात्वा ज्ञात्वा च कर्माणि जनोय मनोतिष्ठति। जब कोई व्यक्ति काम को ठीक से जान करके इसका क्या फल है, क्या लाभ है, क्या अलाभ है, नहीं करने से क्या होगा, इसको जान करके काम करता है, और दूसरा व्यक्ति होता है अज्ञातवा, बिना जाने बस काम चालू कर देता है। तो जान करके कोई आदमी करता है, कोई बिना जाने देखा देखी कर देता है, कोई के फल नहीं जानता है, कोई काम कर रहा है तो उसके देखा देखी करता है, तो उसको कहते हैं अज्ञातवा। ज्ञात्वा अज्ञात्वा च कर्माणि जनोय मनोतिष्ठति, यह मनुष्य लोक है, कोई कोई जानकर काम करते हैं, कोई अनजान में, लेकिन कर्म के फल को ठीक से स्वरूप को जान करके जो काम करता है, जो विद्वान है, तो उसे कर्म की सिद्धि प्राप्त होती है। और तथा न विदुषो भवेत, तथा न विदुषो भवेत, और बिना जाने कोई काम करता है तो उसको सिद्धि नहीं मिलती है। तो तुम्हारा प्रश्न सार क्या है बोलो, बच्चे को कहा जाए कृष्ण को, तो कहते हैं मैं पूछ रहा हूं कि तत्र तावत क्रिया योग भवता किम विचारितम, ये जो क्रिया योग आप लोग इतना बड़ा ठान रहे हैं, यज्ञ करने जा रहे हैं, तो ये वेद द्वारा अनुमोदित है क्या, ये वेद में लिखा गया है करने के लिए, विचारितम का अर्थ है वेद में कहा गया, शास्त्र कहता है इसको करने के लिए, अथवा लौकिक कि लौकिक केवल क्रिया है, कि लोग दूसरे करते हैं इसलिए आप लोग करते हैं। लौकिक चीज है कि वैदिक है? शास्त्र में कहा गया है करने के लिए कि ऐसे ही आप लोग कर रहे हैं? तन में पृछत, मैं आपसे पूछ रहा हूं साधु भाण्यता, आप ठीक ठीक बताइए, घबराइए मत, पूरा मैं सुनने के लिए तैयार हूं, ठीक ठीक समझाइए। साधु का अर्थ है ठीक ठीक, पूरा कंप्लीट। इस बात को सुनकर नंद महाराज कहते हैं, श्री नंद उवाच, पर्जन्यो भगवान इंद्रो मेघास्तस्यात्मूर्तय, बेटा भगवान इंद्र का नाम है पर्जन्य, और भगवान इंद्र के साक्षात स्वरूप ही है मेघ। देखिए नंद बाबा ठीक से बता रहे हैं, इंद्र का नाम है पर्जन्य और उनकी मूर्तियां हैं, उनके स्वरूप ही है मेघ बादल। तेभी बरसंत भूतानाम प्रीणनम जीवनम पय, तो ये बादल सभी प्राणियों को तृप्त करने वाला जल और जिलाने वाला जल बरसाते हैं, जल बरसाते हैं, तो इसी जल से सभी जीव जीते हैं, सुखी रहते हैं। तो हे तात प्रिय बेटा, मैं हम गोप लोग और अन्य च और अन्य भीज लोग, वार मुचान जल देने वालों के पति ईश्वरम, वास्तव में जल मिलता है भगवान इंद्र की कृपा से, वे कह रहे हैं तो जल देने वालों में सबसे श्रेष्ठ हैं, तो हम लोग उन्हीं की पूजा कर रहे हैं। कृष्ण ने पूछा था कि कस्य च उद्देश्य, किसके लिए पूजा कर रहे हैं, तो कहते हैं बादलों के स्वामी भगवान इंद्र के लिए, इंद्र जल बरसाते हैं और जल से ही सारी दुनिया जीती है, खाती है, पीती है। अच्छा, केन वा साध्यते मख, भगवान ने पूछा था किन वस्तुओं से यज्ञ आप लोग करेंगे, करने जा रहे हैं, तो कहते हैं द्रव्येश तद रेतसा सिद्धि, उन द्रव्यों से जिन द्रव्यों को भगवान इंद्र ने उत्पन्न किया है, अरे दूध से, अन्न से, दही से, घी से, यज्ञ इसी से होता है, तो उनकी कृपा से, उनकी शक्ति से, उनके बरसाए हुए जल से सब उत्पन्न हुआ है, इसलिए इन वस्तुओं से हम लोग, अन्य लोग और सभी नर उनकी पूजा करते हैं। नरः क्रतुभिर्जजन्ते, यज्ञों के द्वारा इंद्र की पूजा करते हैं। फिर कहते हैं मानो भगवान ने कहा कि अरे आदमी काम करता है, इससे सब जीते हैं, खाते हैं, तो नंद बाबा ने कहा नहीं नहीं सुनो, पुंसम पुरुष कारणम पर्जन्य फल भावना तत्शेषेणोपजीवन्ति त्रिवर्ग फल हेतवे, पुंसम पुरुष कारणम पर्जन्य फल हेतव, इंद्र की वर्षा से ही सभी जीव जीते हैं, और जब इंद्र को हम लोग कुछ देते हैं, उनकी पूजा करते हैं, तो उनके प्रसाद को खाते हैं और उनकी कृपा से ही सब सिद्धि होती है। देखो यदि जल न बरसे तो किसी भी कर्म की सिद्धि नहीं होगी, अनाज नहीं होगा, फल नहीं होगा, पेड़ पौधे नहीं बढ़ेंगे, गौए नहीं जिएंगी। इसलिए मनुष्य पुरुषार्थ करता है, जैसे खेती करता है, लेकिन फल कैसे होता है, जब वर्षा होती है तब, नहीं तो केवल ताकते रही ऊपर आकाश में, कुछ उत्पन्न नहीं होता है, जैसे 2 साल पहले यहाँ हुआ था। तो पर्जन्य फल भावना, मेघ ही फल देने वाला है और ये सब इंद्र की कृपा से हो रहा है। यह एनम विसृजे धर्म, मन भगवान ने जब कहा कि पिताजी अगर इस यज्ञ को न किया जाए तो क्या होगा, अगर कोई मान लीजिए नहीं कर सका किसी तरह से तब क्या होगा, तो कहते हैं नहीं सुनो, यह एनम विसृजे धर्मम पारंपरिया गतम न रह, कोई मनुष्य यदि परंपरा से आए हुए इस यज्ञ को, इस धर्म को नहीं करता है तो सवय नापनौते स्वप्न, फिर उसका मंगल नहीं होता है, अगर इसको न करे तो उसका मंगल नहीं होता है। क्यों नहीं करेगा, कामात लोभात भयात द्वेषात, काम से कोई न करे। काम का अर्थ होता है कि हम घर में सामान लाएंगे, खाएंगे, पिएंगे, हम क्यों इसमें खर्च करें, तो काम करते हैं। लोभात कोई ये सोचे कि इस यज्ञ में इतना पैसा लग जा रहा है, उसको बचाना है, या भयात या भय से, किसी के भय से कि स्वजन कहे कि इतना मत खर्च करो, उसके भय से न करे, या देवता के प्रति द्वेष से। नंद बाबा कह रहे देवता से द्वेष करके कि क्या इसकी पूजा होगी, हम नहीं कर चाहते हैं, नहीं करेंगे। तो काम से, लोभ से, भय से और द्वेष से यदि कोई इसको नहीं करता है तो सशोभनम न आपनौती, फिर उसका मंगल नहीं होता है, हालत बिगड़ जाती है। यही नंद बाबा का उपदेश है। बाप और बेटा में बात हो रही है, यज्ञ को रोकना है। ऐसा नहीं कि भगवान कृष्ण पूछ रहे हैं कि बड़ा जान जाए अच्छा से और करेंगे हम, नहीं, तर्क दे करके, बिल्कुल कुतर्क दे करके, पखंडवाद के द्वारा भगवान ने रोक दिया इस यज्ञ को, उन गोपों को रोक दिया और श्री गोवर्धन जी की पूजा कराया। तो पहले यज्ञ को रोकना इंद्र का यह भी कठिन काम था। नंद बाबा की बात सुन ही रहे हैं कि कोई अगर इस यज्ञ को न करे तो उसका मंगल नहीं होगा। श्री शुक उवाच, भगवान अपि तत्रैव बलदेवेन संयुतः अपश्यन्नो संगोपान इन्द्रजागृतोद्यमान। तदभिज्ञोपि भगवान सर्वात्मा सर्वदर्शनः प्रश्रयावनतो पृच्छत् वृद्धानन्द पुरोगमान कथ्यतां मे पितः कोयम् संभ्रमो वा उपागतः किं फलं कस्य चोद्देशः केन वा साध्यते मखः। एतद् ब्रूहि महान् कामो मह्यं शुश्रूषवे पितः नहि गोप्यं हि साधुना कृत्यं सर्वात्मनामिह। अस्त्यस्वपरदृष्टिना अमित्रो दास्तविद्विषा उदासीनोरिवद्वर्ज्य आत्मवत्सुहृदुच्यते। ज्ञात्वा ज्ञात्वा च कर्माणि जनोयाम् अनुतिष्ठति विदुषः कर्म सिद्धिः स्यात् तथा न विदुषो भवेत्। तत्र तावत् क्रियायोगः भवतां किं विचारितम् अथवा लौकिकस्तन्मे पृच्छतः साधु भण्यताम्। श्री नन्द उवाच, पर्जन्यो भगवान् इन्द्रो मेघास्तस्यात्ममूर्तयः तेभि वर्षन्ति भूतानां प्रीणनं जीवनं पयः। तं तात वयमन्ये च बार मुचाम पतिमीश्वराम द्रव्यैस्तद्रेतसा सिद्धये यजन्ते क्रतुभिर्नरः तच्छेषेणोपजीवन्ति त्रिवर्ग फलहेतवे पुंसां पुरुषकाराणां पर्जन्यः फलहेतव भावनः ययेनं विसृजे धर्मं पारंपर्यागतं नरः कामाल्लोभाद् भयाद् द्वेषात् सवै नाप्नोति शोभनम्। श्री शुक उवाच वचो निशम्य नन्दस्य तथान्येषां व्रजौकसाम् इन्द्राय मन्युं जनयन् पितरं प्राह केशवः। कुछ लोग आवृत्ति करेंगे, पांच छह पुरुष लोग और पांच छह माताएं, तब तक धैर्य रखना चाहिए। श्रील प्रभुपाद जी जब अमेरिका में भाषण करते थे शुरू में, तो रह रह करके बीच में संस्कृत के श्लोक कोट करते थे, भगवत गीता से विशेषकर भागवत। तो हमको बता रहे थे एक भक्त के, जब संस्कृत बोलते थे तो उस समय हम अब हमारा समझ ऑफ हो जाता था कि क्या बोल रहे हैं, लेकिन इतनी श्रद्धा थी कि ये वेद का वाक्य बोल रहे हैं, रिवील्ड स्क्रिप्चर का श्लोक बोले, भगवत गीता का खास कर, तो लोग सुनते थे आनंद से। केवल उस समय शब्द भर सुनते थे, अर्थ नहीं समझ में आता था, और बड़े धैर्य से सुनते थे। तो इसी तरह से संस्कृत का उच्चारण श्रीमद् भागवतम का, वो अभी एक कथा है, इसीलिए बाकी लोगों को उसे सुनना चाहिए और कुछ भक्तों को बोलना चाहिए। हरे कृष्ण बोलिए। ये माइक, हरि बोल, एक माइक की व्यवस्था करो, हाथ में लेकर को लोग करें, वो दे दीजिए खोल करके वहां से। हाँ है ना नीचे, हाँ एक एक श्लोक, तब का केवल आवृत्ति होगी।
भगवान
तत्रैव बलदेव न संयुतः अवश्यमिव सन्गोपान् इन्द्र जागृतोद्यमान्। तदभिज्ञोऽपि भगवान् सर्वात्मा सर्वदर्शनः प्रश्रयावनतो पृच्छत् वृद्धानन्दपुरोगमान्। पिता मे पिता कोऽयम् संभ्रमो वा उपागतः किं फलं कस्य च देशः केन वा साध्यते मखः। एतद्ब्रूहि महान् कामो मह्यं शुश्रूषवे पितः नहि गोप्यो हि साधूनां नित्यं सर्वात्मनामिह। अस्त्य स्वपरदृष्टीनां मित्रो दास्त विद्विषाम् उदासीनो दिवद्वर्ज्य आत्मवत् सुहृदुच्यते
ज्ञात्वा
ज्ञात्वा च कर्माणि जनो यामनुतिष्ठते विदुषः कर्म सिद्धि स्यात् तथा न विदुषो भवेत् तत्रतावत् क्रियायोगः किं
विचारितम्
अथवा लौकिकस्तन्ये
ईशतः
साधु भण्यताम् पर्जन्यो भगवानिन्द्रो मेघास्तस्यात्ममूर्तयः ते विवर्षन्ति भूतानां प्रीणनं जीवनं पयः दस श्लोक तक बोलिए
वार्मुचाम्पतिमीश्वरम्
द्रव्येस्तद्रेत सह सिद्धै
विन्दरः
ठीक है माताजी पढ़िए
श्रीशुकौवाच
भगवानपि तत्रैव
बलदेवेन
संयुतः
अपश्यन्निव
सन्गोपान्
इन्द्रजागकृतोद्यमान्
तदभिज्ञोऽपि भगवान्
सर्वात्मा सर्वदर्शनः
प्रश्रयावनतो पृच्छ
वृद्धानन्दपुरोगमान्
भक्तकामे पितः कोऽयम्
संभ्रमो
वा उपागतः
किं
फलं कस्य
चोद्देशः
केन
वा साध्यते
मखः
एतद्
ब्रूहि महान्
कामो
मह्यं
शुश्रूषवे
पितः
न
हि गोप्यं
हि साधूनाम्
कृत्यं
सर्वात्मनामिह
श्रीशुक उवाच
भगवान
कृष्ण
अपि
भी
तत्र
एव
वही
ही
बलदेवेन
श्री
बलदेव जी के साथ
संयुतः
युक्त
अपश्यत्
देखे
कुछ बोले नहीं
निवसन
निवास
करते हुए
गोपाल
गोपों
को
इंद्रजागर
कृतोद्यमान
जो
इंद्र
यज्ञ
के लिए
उद्यम
कर रहे थे
अनुवाद
बोली
भगवान
कृष्ण भी
श्री बलराम जी के
साथ वहीं ब्रज में वृंदावन में निवास कर रहे थे। निवास करते हुए उन्होंने देखा कि वहां के गोप लोग इंद्र का यज्ञ करने के लिए बहुत काम कर रहे हैं। तद अभिज्ञ अपि इसको जानते हुए भी भगवान सर्वज्ञ सर्वात्मा सर्वांतरजामी सर्वदर्शनः और ब्रज में सब कुछ देख ही रहे थे। प्रश्रयावनतः विनय से अवनत होकर हाथ जोड़कर प्रणाम करके अपृच्छत पूछे वृद्धान बड़े बड़े गोपों से नंद पुरोगमान जिनमें नंद महाराज पहले चलने वाले थे, नंद महाराज प्रधान थे। पिछले वर्ष इसी तारीख को अंग्रेजी के अनुसार और इसी स्थान पर इस अध्याय के पूर्व के अध्याय की कथा हो चुकी है। दो अध्याय की कथा गत वर्ष हुई थी, 22वें और 23वें। 22वें अध्याय में भगवान के द्वारा चीरहरण की लीला का वर्णन किया गया और 23वें में ब्राह्मण पत्नियों पर भगवान ने किस तरह अनुग्रह किया और वे कितना भगवान कृष्ण से प्रेम करती थी इसका वर्णन किया गया। इसके साथ ही साथ अंत में यह भी सुखदेव गोस्वामी ने कहा कि जो यज्ञ पत्नियों के पति थे, जैसे पहले भगवान कृष्ण में उनकी श्रद्धा नहीं थी, प्रसाद नहीं दिए, लेकिन अपने पत्नियों की अलौकिक भक्ति को देखकर वे भी भगवान कृष्ण के भक्त हो गए और दर्शन की इच्छा रहती थी भगवान के लिए, भगवान के दर्शन की, लेकिन कंस के भय से ये लोग भगवान का दर्शन करने नहीं गए, पर घर पर रह करके ही अपनी पत्नियों के साथ वे भगवान की भक्ति कर रहे थे। तो यहां से सुखदेव गोस्वामी पुनः कथा चालू कर रहे हैं कि वे ब्राह्मण अपने घर पर रहकर भगवान कृष्ण की भक्ति कर रहे थे, तो भगवान भी अपने घर पर ही रह रहे थे। भगवान अपि यहां से जोड़ रहे हैं, तो भगवान भी ब्रज में निवास कर रहे थे, वृंदावन में रह रहे थे और गोपों को देखे करते हुए। अपि का अर्थ क्या होगा? जैसे ब्राह्मण है घर पर रह करके भगवान की भक्ति कर रहे थे, तो भगवान भी घर पर रह करके देखे कि गोप लोग बहुत भारी यज्ञ करने जा रहे हैं। देखिए संस्कृत में ये अपि शब्द का प्रयोग है तो एक अव्यय है, इसके बहुत से अर्थ होते हैं, लेकिन जोड़ा जा रहा है भगवान भी। भगवान भी जैसे किसी को कहा जाए कि यह व्यक्ति भी भोजन किया, इसका अर्थ है कि और किसी ने किया था, है ना, तब तो कहा जा रहा है कि यह भी भोजन किया। भगवान भी तत्र एवं निवसन वहीं रहे, तत्र का अर्थ ये नहीं कि यज्ञशाला, भगवान भी वहीं रह रहे थे। तत्रैव का एक अर्थ है कि भगवान का जो डेरा था टेम्पररी, वो बिल्कुल यज्ञ भूमि के निकट ही था, वृंदावन, आज जिसे वृंदावन कहते हैं, जो वृंदावन प्रसिद्ध टाउन है, वहीं भगवान रह रहे थे उसी वृंदावन में। बहुत निकट है यज्ञ पत्नियों का वह स्थान भद्रावन, देखते हैं कितना, ज्यादा से ज्यादा 2 किलोमीटर होगा ना, उतना भी नहीं होगा, तो यही आशय है सुखदेव गोस्वामी का कि ब्राह्मण लोग वहां रह रहे थे तो भगवान भी वहीं रह रहे थे, उसी वृंदावन में निवास कर रहे थे। ये बच्चों को कंट्रोल करने वाले भी रहना चाहिए। उनकी अपनी समस्या रहती है। भगवान भी तत्र एवं निवसन वहीं रह रहे थे वृंदावन में, किसके साथ? बलराम जी के साथ। हरिश्री जी कहते हैं कि बहुत बड़े देवता का अपमान करना है तो भगवान सोचे कि बल को अपने साथ रखना चाहिए, बल रहेगा तो काम करेगा। यद्यपि गोवर्धन उठाने में बलराम जी साथ नहीं दिए, उसका कारण यह था कि बलराम जी चाहते थे कि कृष्ण का जस बढ़े, इसमें हम लगेंगे तो लोग अश्रद्धा करेंगे कि कुछ बलराम जी ने भी जोर लगा दिया तब कृष्ण उठा लिए, तो बलराम जी जानबूझ करके नहीं उठाएंगे, कृष्ण का जस बढ़ना चाहिए। लेकिन भगवान मानो ये चिंता कर रहे हैं कि बहुत बड़े देवता का विरोध करने जा रहे हैं तो हमारे पास मूर्तिमान बल होना चाहिए। बलेन दिव्यति क्रीडति इति बलदेव, जो बल के साथ क्रीड़ा करते हैं रहते हैं वो हैं बलराम जी। तो बलराम जी के साथ भगवान थे, बलदेवेन संयुत, कमजोर व्यक्ति के साथ नहीं थे, उनको कोई चिंता होगी देवता का विरोध करने में, बलदेवेन संयुत। तो वैसे तो कृष्ण बलराम साथ रहते ही हैं, किसी उद्देश्य से किसी बड़े काम करने के लिए नहीं, स्वाभाविक लीला करते हैं का परस्पर में बहुत स्नेह है, तो भगवान बलराम जी के साथ। अपश्यत, उन्होंने देखा, कई दिन से यज्ञ की तैयारी कर रहे थे, तो कम से कम 100-200 क्विंटल गेहूं पिसाना होगा, कुटना पिसना घी जुटाना, घी तो ब्रज में अपार था ही लेकिन फिर भी उसका एकत्रीकरण होगा ना, घी आएगा, पूरी बनाई जाएगी, पुआ बनाया जाएगा, और कितना खीर रबड़ी और सब पूजा में ये सब बनता था। सूरदास जी ने लिखा है कि बेसन पीस करके बहुत बड़ा टीला बनाया गया है, चना के आटा, चना का बेसन होता है पीला पीला, सब किया जा रहा था। तो भगवान देखे अपश्यत, न तो किंचित उक्तवान। श्रीपाद सनातन गोस्वामी जी लिखते हैं भगवान देख रहे थे लेकिन कुछ टोके नहीं, कहे नहीं, करने दीजिए करने दीजिए, क्योंकि सारे सम्मान से गिरिराज गोवर्धन की पूजा करनी है तो जुटाने दीजिए, सब जुटाने, अभी पकाया नहीं जा रहा था, सब कच्चा माल जुटाया जा रहा था, जो भी गुड़ चीनी तो उस समय नहीं चलती थी, और सब कुटना पिसना सफाई करना वो करना सारा सामान चल रहा था। इसलिए अपश्यत, अपश्यत देखे, देख रहे थे रोज, कई दिन से देख रहे थे लेकिन न किंचित उक्तवान, कुछ कहे नहीं, चलने दीजिए। इंद्र जाग कृतोद्यमान, उस समय और ब्रज में कोई काम नहीं था, केवल इंद्र के पूजा की तैयारी में सब लगे थे, सामान जुटाने ये वो, देवता का पूजन है ना। कृत उद्यमान मतलब उसी उद्यम में लगे थे, उद्यम का अर्थ होता है खूब परिश्रम करना, गाड़ी के गाड़ी माल लाया जा रहा था पकवान बनाने के लिए, बैल गाड़ी में लाद लाद करके इस घर में ये पकेगा, इस घर में ये हो रहा है, ये हो रहा है, पकवान तो होगा एक जगह लेकिन सामान सब जुटाए जा रहे थे, भिन्न भिन्न घर से लोग ला रहे थे। होता है ना, हमारा भी घर का लगना चाहिए, हमारा भी लगना चाहिए, ऐसा नहीं था उसमें चंदा मांगा जाता था, अपने आप लोग ला रहे थे, हमारा लगना चाहिए देवता की पूजा में, हमारा लगना चाहिए, हमारा लगना चाहिए, हमारा लगना चाहिए। ये प्रश्न होगा कि भगवान क्यों रोके। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर लिखते हैं कि भगवान को ये बर्दाश्त नहीं हुआ कि हमारे पार्षदों से इंद्र पूजा ले, खास हमारे जो जन है और मैं यहीं पर विद्यमान हूं साक्षात परब्रह्म ईश्वर, हमारे सामने इंद्र पूजा लेगा। सबसे ज्यादा इस बात का दुख भगवान को हुआ कि हमारे पार्षदों से ये पूजा ले रहा है, ये कौन है पूजा लेने वाला। अच्छा, दूसरी बात है कि भगवान अब तक केवल बांसुरी ढोए थे, कोई वजन नहीं ढोते थे। उनकी इच्छा थी कि कोई भारी चीज उठाओ, इच्छा थी भारी में, सबसे भारी तो पर्वत ही होता है ना, पर्वत उठाने की इच्छा हो गई। तो सोची क्या करूं कैसे करूं, ऐसे ऐसे उठाने का कोई मतलब नहीं होगा। इंद्र को क्रोध दिलाना चाहते थे कि वर्षा करें, वर्षा करेंगे तो मैं पर्वत को ही छत्र की तरह धारण करूंगा, कृष्ण की इच्छा थी। तो इन सब से वे जब गोप लोग, कुछ गोप जुटे थे और सब तो काम में लगे थे, लेकिन वृद्धानंद पुरोगमन जो बड़े बूढ़े गोप थे वो तो कोई काम कर सकते नहीं थे, केवल प्लान बनाते थे, मीटिंग चल रही थी, इष्ट गोष्ठी गोष्ठी चल रही थी। तो उसी में श्री बलराम जी के साथ भगवान गए और दोनों भाई प्रणाम करके पूछे, तद अभिज्ञ है अपि, तद अभिज्ञ, तद का अर्थ है इंद्र यज्ञ की सारी तैयारी, उसको तत् शब्द से व्यक्त किए गए, उसको जानते थे, क्योंकि कृष्ण का विशेषण यहां है सर्वात्मा, सर्वात्मा जो सबके हृदय में है, अहम आत्मा गुडाकेश सर्वभूताशय स्थित, भगवान का गुडाकेश, मैं सभी प्राणियों के हृदय में आत्मा हूं, अंतर्जामी परमात्मा जो सर्वात्मा अंतरात्मा सबके हैं। अतः वे नंद बाबा के और गोपों के भी अंतरात्मा है, ये किस उद्देश्य से क्या करने जा रहे हैं ये सब देख रहे थे। सर्वदर्शन और सबके वे दृष्टा है, सर्वदर्शन का अर्थ है कि सबको भिन्न भिन्न कामों में वही लगाते हैं। परमात्मा का अर्थ हुआ कि वे चेतना देते हैं, ज्ञान देते हैं, और सर्वदर्शन का अर्थ है कि उनके कामों में लगाते हैं। अथवा एक टीकाकार कहते हैं कि भगवान कृष्ण सब देख रहे थे, ब्रज में ये सामान जुटाया जा रहा है, ये किया जा रहा है, ये परिष्कार सफाई सब देख रहे थे, देखते थे कुछ बोलते नहीं थे। सर्व दर्शन, ऐसे तो परमात्मा है ही, सब कुछ देखते हैं, सबको प्रेरित करते हैं किसी भी कर्म में, और भगवान सभी ऐश्वर्य से पूर्ण। तो सर्वात्मा सर्वदर्शन भगवान के अतः तद अभिज्ञ है, तस्य पूर्व पूर्व दृष्टस्य इंद्र मखस्य तथा श्री ब्रजराजेन प्रत्युत्तरिष्यमाणस्य तद अधिकस्य चार्थस्य अभिज्ञो अपि, सब देखे थे। भगवान 7 साल के हैं तो वैसे भी प्रकट 7 साल तो देखे हैं पूजा, तो अभिज्ञ तत् अभिज्ञ का भी अर्थ है, हर एक साल देखे थे पूजा और इस साल भी अच्छा से देख रहे हैं, सबके हृदय में है, सारा उद्देश्य जानते हैं, फल क्या है और किसके लिए पूजा की जा रही है सब जानते, क्या क्या सामान लगेगा सब उनको मालूम है। तत् अभिज्ञ है अपि, अभितः जानाति इति अभिज्ञ, जो पूरा पूरा जाने उसको अभिज्ञ कहते हैं। तो भगवान अभिज्ञ थे, जानते थे, फिर भी प्रश्रयावनतः विनय से अवनत होकर के, नम्रता से झुक करके, और नंद पुरोगमन वृद्धान अपृच्छत, नंद बाबा जिनमें प्रधान थे उन गोपों से बड़े विनय की भाषा चैलेंज नहीं कि क्या कर रहे हैं बताइए ये कीजिए, नहीं, प्रणाम करके, रोज प्रणाम तो करते ही थे सबको जो वृद्ध गोप लोग थे, प्रणाम किए, प्रणाम करके हाथ जोड़ करके और कंधा झुका करके ऐसे पूछे, नम्र भाव से। सब जानते हैं इनको यज्ञ की पूजा, इंद्र की पूजा रुकनी है, इंद्र का यज्ञ नहीं कराना है, लेकिन ऐसे पूछे जैसे बिल्कुल बच्चे को मालूम नहीं है क्या होने जा रहा है, यही पूछने का तरीका होता है। तो श्री भगवान बोलते हैं, कथ्यता में पिता को यम संभ्रमो व उपागत किम फलम कस चोदेश के न साध्यते मख। पिता, हे पिता, हे पिताजी, वास्तव में संस्कृत में पिता श्री कहते हैं, माता श्री, लेकिन श्री को ही बाद में लोगों ने जी जी कहना चालू किया, तो पिता जी माता जी, लोग वास्तव में माता श्री पिता श्री शब्द है वह, तो श्री थोड़ा उच्चारण करने में अटपटा पड़ता है तो जी सीधा पड़ता है। तो पिताजी, अयम यानी वह का अर्थ जुष्माकम, आप लोग, आप सबको अयम कह संभ्रम, ये क्या व्यग्रता उपस्थित हुई है, दौड़ो दौड़ो, ये सामान जुटाओ, ये करो ये करो, सबको भेजा जा रहा है, कोई ला रहा है, कोई जानते हैं विवाह उत्सव होता है तो कितना भारी हड़बड़ी होती है, ये जुटाना वो जुटाना है, तो यज्ञ हो रहा था पूरे गांव का, पूरे ब्रज का वो यज्ञ हो रहा था, तैयारी हो रही। पिताजी, वह जुष्माकम सर्वेशम एव, वह का बहुवचन में भगवान बोल रहे हैं, वह माने जुष्माकम, तो श्रीपाद सनातन गोस्वामी जी अर्थ करते हैं सर्वेशा में व नतु कर के सांचित, सभी देख रहा हूं, सभी दौड़ रहे हैं, ये काम कर रहे हैं वो कर रहे हैं, कोई शांति से बैठा नहीं है, आप सबको कौन सी व्यग्रता उपस्थित हो गई है, कौन हड़बड़ाहट है इतना। सर्वज्ञ भगवान पूछ रहे हैं, जो सब कुछ देखते हैं सब जानते हैं वो पूछ रहे हैं। देखिए कितना सुंदर रचना है कि पितः वह अयम कह संभ्रम उपागत, उपागत उपकार से निकट, लगता है कि कोई बड़ा काम बहुत निकट आ चुका है, उसका डेट ऑफ निकट आ गया है, शायद हो सकता है कि ये कार्तिक शुक्ल एकम को ये तो पूजा हुई और उसके केवल दो एक दिन पहले सब हो रहा है, सब सामान जुट गया था, पूजा बाकी थी, हो सकता है दीपावली के दिन या दीपावली से पहले धनतेरस आदि हो सकता है बातचीत हो रही हो, क्योंकि उसी दिन पूजा करनी है, जिस दिन इंद्र की पूजा होने वाली थी उसी दिन इंद्र को हटा करके मतलब तिरस्कार करके गोवर्धन जी की पूजा करनी है, इसलिए उपागत उपकार थे निकटम, आगत कार थे पहुंचा हुआ। ये क्या घबराहट आप लोगों को है, इतना आराम से, पहले मैं देखता था कि आप आराम से बैठते थे विष्णु भगवान का जप करते थे, और अब इतना बड़ा काम, इतना घबराहट, इसलिए संभ्रम, सम कार से सम्यक और भ्रमण का, भ्रम कार से भ्रमण, इधर उधर घूमना जाना, ये जुटाना, ये करना, वो करना, ये करना, हमेशा मोबाइल फोन ही लिए रहना ये करो ये जुटाओ ये करो, एक कौन से घबराहट आ गई क्या, और इसे लाभ क्या होगा, इसका कोई बहुत बड़ा फल होगा क्या, ये काम करने जा रहा है, कोई भी कुछ काम करता है इसका फल होता है ना, इससे क्या फायदा होगा, इसका क्या लाभ होगा, किम फलम, भगवान हाथ जोड़ करके पूछ रहे हैं कि पिता ये बताइए इसका क्या फल होगा, किम फलम, कस्य च उद्देश्य, उद्देश्य का अर्थ है किसके लिए, ये किसके लिए किया जा रहा है, ये सब काम सब सामान जुटाना किसके लिए हो रहा है, नहीं क्या संभ्रम है। तब नंद बाबा ने कह दिया कि बेटा ये यज्ञ हो रहा है, यज्ञ हो रहा है, अच्छा यज्ञ हो रहा है, यज्ञ का मतलब कुछ लड़का समझ रहा था, मख मख हो रहा है, यज्ञ हो रहा है। तब कृष्ण पूछते हैं किम फलम, पिताजी इस यज्ञ से क्या लाभ होता है, इसका क्या फल होता है। किम च उद्देश्य, और इस यज्ञ में अच्छा लगता है कि किसी देवता की पूजा करेंगे आप लोग, किस देवता की पूजा की जाती है इसमें, किसके लिए यज्ञ किया जाता है, और इसमें क्या क्या सामान चाहिए। हो सकता है भी पूछे होंगे कितना घी लगेगा, क्या लगेगा और सब। अच्छा यज्ञ किया जाता है तो उसमें देवता को प्रसन्न करने के लिए घी चाहिए और चाहिए, जौ चाहिए, तिल चाहिए, हवन करने के लिए। इतना सामान कौन देवता खाएगा, इतना सामान जुटा रहे हैं आप लोग, ये पूछने का कारण है। किसके लिए इतना पकाव होने जा रहा है, सामान जुटाया जा रहा है, घर घर में ढेंकी जाता चल रहा है। आजकल के लोग तो ढेंकी जाता जाता जानते ही नहीं होंगे। ढेंकी कहते हैं जो धान को कूटने के लिए, चावल अलग करने के लिए, उसकी भूसी छिलका अलग करने के लिए मशीन होता था, ढेंकी कहते हैं। तो घर घर में ढाय 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 चल रहा था, कुटाई हो रही थी, चावल बना रहा था, चिवड़ा बनाया जा, पोहा बनाया जा रहा था। तो ये बहुत हड़बड़ाहट की बात है। तो ये इतना कौन देवता खाएगा बाबा, इस किसके लिए सब कर रहे हैं, और किन वस्तुओं से, वास्तव में यज्ञ किन किन वस्तुओं से पूरा होगा। देख रहे हैं कि पहाड़ की तरह सामान जुटाया जा रहा है, बहुत भारी परिश्रम है। संभ्रम कह करके भगवान एक प्रकार का कह रही, बाप रे बाप, इतना काम, इतना घबराहट, सम्यक भ्रमण। संभ्रम, संभ्रम का एक अर्थ होता है घबरा, अज्ञान भी। सम्यक भ्रम, सम्यक भ्रम आप लोगों को हो रहा है, भ्रमण। प्रकट अर्थ तो यही है कि इतना दौड़ धूप क्यों कर रहे हैं, किन किन वस्तुओं से यज्ञ होता है, किसके लिए किया जाता है। केनो वाम केनो साधने न मुख साध्यते, किन किन सामानों से यज्ञ होता है। अच्छा जब ये बात सुना उस समाज ने, इष्ट गोष्ठी के सदस्यों ने, जिसमें पिताजी नंद बाबा प्रधान थे, तो उनमें से बहुत लोगों ने कह दिया, ननु बालकस्य तौ किम एतत् प्रश्नेन, तुम बच्चा हो और ये प्रश्न क्यों पूछ रहे हो, भागो यहां, काम करने में हम लोगों को डिस्टर्ब हो रहा है, जाओ हटो। लेकिन कृष्ण बड़े होनहार बालक थे, ऐसे उनको डिनाई नहीं कर सकते थे, कुछ तो बताना ही होगा ना। वो भी बेचारा पूछ रहा है हाथ जोड़ करके, हाथ जोड़ करके जानना चाहता है। शांत हो, एकाध लोगों ने ऐसे कहना चालू किया कि जाओ भागो यहां से, दोनों भाई जाओ यहां से, क्या इस प्रश्न से मतलब है। लेकिन कुछ नहीं कहा, नहीं नहीं ठीक है, पूछने दो पूछने दो। तब भगवान कहते हैं, जब भगाने के लिए कहा, कुछ लोगों ने डांटा, तब कैसे कहते हैं, एतद ब्रूहि महान कामो मह्यम सुश्र सवे पिता, बार बार पिता 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 कह रहे हैं, अपने में स्नेह उत्पन्न करने के लिए बाबा का, लोग भगा न पावे, बता अपना पुत्र पूछ रहा है तो बताना चाहिए, तो बार बार पिता संबोधन कर रहे हैं, पिताजी पिताजी। पिता बार बार कहने से वैसे ही वात्सल्य की मूर्ति नंद महाराज में और स्नेह उमड़ जाएगा, बेचारे बहुत अच्छी बात पूछ रहा है ना, देवता की बात, यज्ञ की बात, गलत थोड़े पूछ रहा है, स्नेह उत्पन्न हो ही जाएगा। भगवान कहे, पिता मह्यम महान काम, मह्यम सुसु सवे, हमें इसको सुनने की कामना है, भाई अच्छी बात, देवता के विषय में, यज्ञ के विषय में एक बच्चा प्रश्न कर रहा है, कितनी महान बात है। तो हमको ये बहुत महान कामना है, अभिलाषा है इसको सुनने के लिए। महान काम अभिलाषा मम अत्र वर्तते अतः सुश्रसवे महियम, मैं सुनना चाहता हूं। तो बाबा हमेशा आप हमसे प्रेम किए हैं, स्नेह किए हैं, हम इसको सुनना चाहते, सुनने से हमको बहुत प्रसन्नता होगी, अतः मुझको खुश करने के लिए, मुझको प्रसन्न करने के लिए हमको सुनाइए। कितनी महान बात वैसे भी है कि बच्चा अपने पिता से देवता के विषय में, धर्म के विषय में पूछे, गलत थोड़े है। लेकिन वो पूछ रहा है, बच्चा सारा हुलिया लेकर के यज्ञ बंद करेगा। तो ऐसे पूछ रहे हैं। सुश्रसवे, मैं सुनने का इच्छुक हूं, अतः मह्यम एतद् ब्रूहि, ये सब बोलिए, हम जो प्रश्न किए हैं इसको पिताजी बताइए। ही जतः, ही का अर्थ है क्योंकि, इह जगति कुत्रापि सर्वात्मनाम अस्वपर दृष्टि नाम अमित्रोदास्त विद्वसाम साधु नाम कृत्यम ही न गोप्यम अस्ति। ये बात दो श्लोकों का इसमें अन्वय है। अब सबको सुना करके कह रहे, केवल नंद बाबा के लिए नहीं, सब लोग बैठे हैं लेकिन संबोधन अपने पिता को ही करते हैं। इह का अर्थ इसमें जगति, कहीं भी संसार में, किसी भी गांव में, किसी भी समाज में, सर्वात्मना और अमित्रोदास विशेषण, उन सज्जन पुरुषों के लिए छिपाने लायक कृत्य कुछ नहीं होता है, खुला होता है उनका हृदय, कोई कपट नहीं कर, छिपाते नहीं है। कौन लोग? देखिए बच्चा बोल रहा है बड़े बूढ़े गोपों को कन्विंस करने के लिए। सर्वात्मनाम, जो सबकी आत्मा है, जो सर्वत्र आत्मदृष्टि रखते हैं, सबको अपना समझते हैं, अपने से भेद नहीं जानते हैं, उनको सर्वात्मनाम कहते हैं। जो सबको अपना समझते हैं, सबके प्रति स्वदृष्टि होती है, अच्छा, और अस्व पर दृष्टि नाम, और जिनके दृष्टि में यह अपना है और यह पराया है, यह स्व है और पर है, ऐसे जिनकी दृष्टि नहीं है, सबको अपना समझते, अपना स्वरूप ही समझते हैं, और इस कारण से जिनके लिए न कोई अपना स्पेशल मित्र है, न कोई उदासीन है और न कोई शत्रु है, इस भाव से जो शून्य है और साधु हैं, सदाचारी हैं, उनका कोई भी कृत्य, कोई भी कर्म गोप्य नहीं होता है, छिपाने लोग नहीं, छिपाने लायक नहीं होता। यह स्नेह उत्पन्न करने के लिए कह रहे, नहीं तो उन बड़े बूढ़े गोपों को यह कहना कि ये काम छिपाना नहीं चाहिए, कोई अलग है ही नहीं अपने से अलग, सबको अपना स्वरूप ही समझते हैं, और यह मित्र है, यह शत्रु है, यह उदासीन है, इस प्रकार का जिनको भाव नहीं है, उनका जो कृत्य होता है वो छिपाने योग्य नहीं होता है, कभी गोप्य नहीं होता है। नंद बाबा ने कहा और गोपो ने कहा, गृहस्था वयम, हम गृहस्थ हैं, एवं भूता साधवा भव तुम न शक्नुमा, तुम जैसे साधु की बात कर रहे हो वो विरक्त लोगों के लिए होता है, सबको अपनी आत्मा समझते हैं, किसी से भेदभाव नहीं रखते हैं, लेकिन हम गृहस्थों को रोज छिपाना होता है, रोज छिपाना होता है कई प्रकार की बात, सबको कैसे खोल दिया जाए, सबको कैसे बता दिया जाए, हम लोग गृहस्थ हैं, हम लोग ऐसे विरक्त साधु नहीं हैं। नंद बाबा आदि ने कहा, इसलिए तुम जैसे बच्चों से सभी बातें नहीं कही जा सकती। तो भगवान कहते हैं, और उदासीन अरिवद वर्ज्य, हम मानते हैं कि जो उदासीन है वो सिद्धांत कह करके अब बात बदल रहे, जो उदासीन है उसको तो शत्रु जैसा ही व्यवहार करना चाहिए, उसे कोई बात नहीं कहनी चाहिए। उदासीन का अर्थ तटस्थ नहीं होता है, तटस्थ में और उदासीन में अंतर है। तटस्थ का अर्थ होता है कि आज इस तट पर है कल उस तट पर हो जाएगा, आज इस पार्टी में है कल उस पार्टी में हो गया, उसको तटस्थ कहते हैं। और उदासीन का अर्थ है दोनों से कोई मतलब नहीं। उत आसीन, जैसे नदी की धारा बह रही है तो कोई मंच बना करके ऊपर रहे उत आसीन तो उसको उदासीन कहें, उसको कोई मतलब नहीं है दोनों पक्षों से, शत्रु से या मित्रता मित्र से, तो उसको उदासीन कहते हैं। तो भगवान कहते हैं यदि उदासीन है तो उसे छिपाना चाहिए, बात गोपनीय रखना चाहिए, नहीं तो समय पा करके शत्रु की तरह बाहर कर देगा बात। शत्रु तो बाहर जो करता है, शत्रु तो शत्रु का करता ही है, जो उदासीन है उसको शत्रुवत वर्जन, वो तो शत्रु की तरह दूर रखने लायक, इस पर विश्वास नहीं करना चाहिए, भगवान कहते हैं। लेकिन अभी असली बात वो कहना चाहिए सुहृद आत्मवत सुहृद उच्चते, लेकिन जो सुहृद है अपना बिल्कुल संबंधी है हितैषी है तो उसको तो अपना स्वरूप ही समझना चाहिए, उससे कोई बात नहीं छिपानी चाहिए, छिपा कर क्या करेंगे, वो तो अपने समान ही है। जैसे पति है पत्नी उसका सुहृद है, चाहे पुत्र है चाहे पिता है भाई है, इनसे क्या छिपाएंगे। तो भगवान कहते हैं कि जो सुहृद होता है सहज हितकारी, जो प्रति उपकार की अपेक्षा रखकर के उपकार नहीं करता बल्कि स्वाभाविक ही करता रहता है उपकार, तो उसको सुहृद कहते हैं। तो सुहृद को तो अपना स्वरूप ही समझना चाहिए। कहा जाता है, उपदेश नहीं कर रहे हैं, ये कह रहे हैं कि उच्चते, सभी लोग जानते हैं कि सुहृद जो होता है उसमें और अपने में भेद नहीं होता। अतः मैं तो आपका प्रिय पुत्र हूं, मुझमें और आप में पिताजी भेद नहीं है, आपका हृदय मेरा हृदय सब एक है, इसलिए हमसे ये बात नहीं छिपानी चाहिए। मैं सुहृद हूं, आप हमारे सुहृद हैं, तो हमसे मत छिपाइए कुछ भी, बताइए, हमको जानने की इच्छा है। सब गोप लोग अब बातचीत करना रोक करके कृष्ण की बात सुन रहे थे। ऐसे नहीं है कृष्ण की कोई कह दे कि भागो जाओ खेलो, सबको बड़ा आनंद मिल रहा था कि बच्चा आया है इतने हाई क्लास की जिज्ञासा कर रहा है, अच्छा लग रहा था। लेकिन मीटिंग में व्यवधान भी हो रहा था, कोई बात नहीं। तो सर बेटा क्यों सुनने की इच्छा है तुमको, क्यों सुनना चाहते हो? हमको जिज्ञासा बहुत है कि ये जो काम आप करने जा रहे हैं ये शास्त्र में लिखा गया है करने के लिए कि देखा देखी लोक में दुनिया में होता है इसलिए कर रहे हैं। होता है लोक और वेद दो प्रकार का काम होता है, उसी को भगवान यहां पर पूछ रहे हैं। मैं इसलिए पिताजी पूछ रहा हूं, कोई किसी भी कर्म को ठीक से जान लेना चाहिए, किसका क्या स्वरूप है, किसके लिए किया जाता है, उसका फल क्या होता है। यदि आदमी जान लेता है तो उसको कर्म सिद्धि मिलती है। ज्ञात्वा ज्ञात्वा च कर्माणि जनोयम अनुतिष्ठति। ये पिताजी दो प्रकार के मनुष्य हैं संसार में, एक है जान बुझ करके काम करते हैं कि ये काम का ये फल होगा, ये लाभ होगा, इतना खर्च होगा। मूर्ख व्यक्ति बिना जाने ही काम ठान देते हैं, सोचेंगे कि इसमें केवल 10 रुपया लगेगा, 1000 रुपया लग जाएगा करने में, कर्म की सिद्धि नहीं होगी। ज्ञात्वा अज्ञात्वा च कर्माणि जनोयम अनुतिष्ठत। तो विदुष जो विद्वान व्यक्ति है, कर्म का स्वरूप जानता है और उसका फल जानता है, उसमें करने में कितना प्रयास करना पड़ेगा, कितना धन लगाना पड़ेगा, कितना टाइम लगेगा, ये सब जान करके काम करता है तो उसको कर्म की सिद्धि मिलती है। और बिना जाने ही देखा देखी कोई करता है, नकल करता है, तो उसको कर्म की सिद्धि प्राप्त नहीं होती। इसलिए जानना चाहिए। अच्छा, आप लोगों को भी जानना चाहिए और हमको भी जानना चाहिए। तो हम तो तब जानेंगे जब आप बताएंगे, क्योंकि आगे हमको भी करना है ना। हम भी गाय चराएंगे, लेकिन बीच बीच में यज्ञ दान तप ये सब करना चाहिए ना। तो इसके लिए हमें जानना बहुत जरूरी है। बहुत महत्वपूर्ण भगवान की जिज्ञासा है, जानना चाहिए। किंच सुहृदि सह विचार ज्ञातव्य कर्म कर्तव्य न तु गतानुगति का मात्रेण। किसी भी व्यक्ति को कोई काम करना हो स्पेशल, तो अपने संबंधियों से, अपने परिवार के लोगों से मिल करके विचार करके काम करना चाहिए। अन्यथा बिना सुहृदों के, मित्रों से विचार किए बिना, आपस में परामर्श किए बिना कोई काम होता है तो उसमें सफलता नहीं मिलती है। हरिश्वर जी लिखे हैं कि कलयुग में लोग फल पर बहुत दृष्टि रखेंगे, और जो तत्काल फल देने वाला काम होगा उसी कर्म में श्रद्धा होती है। तत्काल फल चाहिए। भविष्य में या अदृष्ट फल, स्वर्ग मिलेगा, ये होगा, मुक्ति होगी, ये होगी, इसमें लोगों की श्रद्धा कलयुग में नहीं होती। देख ही रहे हैं ना, तत्काल फल कुछ होना चाहिए। इधर गांव में तत्काल फल में कुछ लोग कहते हैं, कोई उनका लड़का भजन करने लगता है, कुछ शुभ कर्म करता है तो कहते हैं, यहां तक कह देते हैं अगर भगवान का भजन कीजिए तो कहते हैं भगवान का खाए के देते ना, थोड़ा के खाए के तो हम देता नहीं, तुमको खाने को कोई कृष्ण थोड़े दे रहा है, हम दे रहे हैं खेती करके कमा करके। आज ही कर्म की सिद्धि को क्या देखना है। कई प्रकार के कर्म हैं जिनकी सिद्धि बहुत बाद में आती है, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण सिद्धि होती है। लौकिक सिद्धि देखिए, आज कोई व्यक्ति आम का वृक्ष लगाता है, कोई व्यक्ति और श्रद्धालु कहेगा, अरे क्या परिश्रम कर रहे हो, सिंचाई कर रहे हो, करे फल दे रहा है, कहां फल आया। आजकल के प्रचारक ऐसे ही हैं, थर्ड क्लास के लोग, ये दुनिया में नेता आदि सब तत्कालिक बात कहते, कौन पानी दे रहा है, कौन प्रकाश दे रहा है, कौन देखा है कि धरती कौन बनाया है, कहां जाना है, स्वर्ग कहां है, नरक कहां है, सब यही है। देखो उसके घर का वो लड़का पढ़ा तो मिनिस्टर हो गया, ये हो गया, वो हो गया, ये कर्म सिद्धि। तत्काल कोई कर्म की सिद्धि होनी चाहिए। उनको ये पता नहीं कि हो सकता है वह सिद्धि उसके कई जन्मों के पहले की हो, पहले का कर्म किया है तब उसको मिल रहे सिद्धि। लेकिन मूर्खता बस ये समझ लेते हैं लोग, इस कर्म की का फल है, इस कर्म का फल है, इस कर्म का फल है। तो भगवान का संकेत इसी पर है कि पिताजी देख लेना चाहिए इस कर्म का क्या फल है। और मुख्य भगवान के प्रवचन का सार यही था कि पिताजी आज कोई ये कर्म कर रहा है, यज्ञ कर रहा है, कल दिन बेचारा नहीं कर सके किसी कारण से, तब तो उसका कोई नुकसान नहीं होगा ना। तो नंद बाबा ने आगे कहा है कि नहीं नहीं, इस यज्ञ को अगर नहीं करेगा तब तो नुकसान है। तो भगवान ने इसी पर कन्विंस कर लिया, तब तो यज्ञ इंद्र की पूजा नहीं करने वाले ही सेफ है ना, वो अच्छा रहेगा। होता है ना ऐसा, जैसे मान लीजिए कोई देवता को मानने वाला अगर देवता को बिना भोग लगाए खा ले कोई बच्चा, तो उसका मुंह टेढ़ा हो जाता है। लोक में लोग कहते हैं ये मत छूना, इस देवता का प्रसाद है, छोटा सा बच्चा है, अगर भूल से खा लिया तो देवता उसका मुंह टेढ़ा कर देगा। लेकिन कोई अधार्मिक है, अधार्मिक है, जवान है या मलेच्छ है, उनका मुंह टेढ़ा नहीं होता है। वो इंद्र की क्या किसी की पूजा जानते ही नहीं है, है ना? किसी की पूजा नहीं करते हैं तो सेफ है, और पूजा करने वाले को तो मुंह टेढ़ा क्या करना, ऊपर से मूसलाधार प्रलय करने वाला पानी बरसाया जाएगा, ये दशा होगी। ये खतरनाक काम क्यों किया जाए? भगवान इस तरह से तर्क करके और गोपों को कन्विंस कर लिए। अभी तो नंद, अभी भगवान का प्रवचन चल रहा है, तो अंत में पूछते हैं, तत्र तावत क्रिया योग भवताम किम विचारितम्। भवताम, आप लोगों का यह जो काम है, ये यज्ञ है, भगवान ने गोपों के साथ अस्माकम शब्द नहीं जोड़ रहे हैं, हमारा काम नहीं है सब पूजा करना, भवता ये आप लोगों का, ये आप लोगों का जो यज्ञ है, यह किम विचारितम, विचारितम का यह अर्थ है कि ऋषियों के द्वारा, शास्त्रज्ञों के द्वारा ये भली भांति विचार कर किया गया, शास्त्र में लिखा है क्या? शास्त्र में कोई भी चीज विचारित है जिन्हें सोचे समझे नहीं किया गया है, उसको जगाइए जगाइए, भाविन अपने बगल में जगाओ, शुरू से ही सो रहा है विशाल, सोने के लिए आए मॉरिशस से। ये क्या शास्त्रीय चीज है, अथवा जैसे खेती बाड़ी है वैसे लौकिक चीज है क्या? दुनिया का काम धंधा है और सब है, खेती है, बिजनेस है, नौकरी है, लौकिक चीज है। ये शास्त्र में कहा गया है करने के लिए कि आप लोग किसी के देखा देखिए ऐसे ही चालू कर लिए, आप लोग लौकिक है अथवा वैदिक है, यही मैं पूछ रहा हूं, और इसको भण्यताम आप बोलिए, और जल्दी में मत बोलिए, साधु भण्यताम सम्यक, खूब अच्छा से सांगो पांग समझाइए हमको, तब अब श्री नंद महाराज बोले, भाई सब लोग कैसे बोल सकते थे, हम बहुत से गोप लोग थे तो सब तो नहीं बोलते ना, और वे भी पिताजी पिताजी कभी कभी एक वचन में संबोधन करते थे, 10 आदमी बैठे हैं 50 आदमी तो उसमें कहे पिताजी पिताजी, तो पिताजी ही बोलेंगे ना, और सब तो एक एक साथ बोलेंगे नहीं, श्री नंद उवाच, श्री नंद महाराज बोले, परजन्यो भगवान इंद्र मेघास्तस्यात्ममूर्तय। तो नंद बाबा ने कहा कि बेटा वेद शास्त्र तो हम लोग नहीं पढ़े हैं, ये आचार प्राप्त कर्म है, आचार प्राप्त कर सकता है, कुछ लोग किए पहले, हमारे पिताजी किए, उसके पहले हमारे दादा किए होंगे, और उसके पहले उनके पिताजी किए होंगे, लोक में सब चलता है, तो लौकिक कर्म है, आचार प्राप्त एवं सहेतु का महाप्रजन्य, लेकिन सहेतु कह रहे हैं, कोई पहले से काम किया है बाप दादा, तो इसका मतलब ये थोड़े है कि बिना सोचे किया जाए। तो नंद बाबा कहते नहीं, बहुत अच्छा से सोच करके किया जा रहा है, इसका बहुत अच्छा फल है, लेकिन है बेटा हम तो अपने पिताजी को देखे थे और समाज में लोग कर रहे तो हम भी करेंगे, और तुमको भी यही करना चाहिए, तुम ठीक से सीख लो, सुन लो, हम बता रहे हैं। परजन्यो भगवान इंद्र, भगवान परजन्य, परजन्य कहते हैं वर्षा के अधिदेवता को, इंद्र भगवान वर्षा के देवता है, वर्षाधिदेवता, उनका नाम है इंद्र, और एक नाम परजन्य भी है, वर्षा को मेघ को परजन्य कहते हैं, इसलिए इंद्र का नाम ही है परजन्य। जैसे कई बार आपने देखा होगा किसी व्यक्ति का नाम उसके विभाग के नाम से ही जोड़ दिया जाता है, नाम न रह करके विभाग का नाम रख देते हैं। इंद्र वर्षा के बादल के देवता हैं, इसलिए उनको भी परजन्य कहते हैं। तो भगवान इंद्र नाम सुने हो बेटा इंद्र का, भगवान कहते हाँ इंद्र, अच्छा हाँ इंद्र, तो तब तो वे परजन्य हैं। और मेघा तस्य आत्ममूर्तयः, बादल देखते हो ना बेटा आकाश में वर्षा होती है, देखे हो ना, हाँ वर्षा होती है, वर्षा कैसे होती है, तो मेघ से होती है। ये जो मेघ है ये इंद्र की ही अपनी मूर्ति है, अपना स्वरूप है। इसका मतलब कि भगवान इंद्र मेघ बनकर वर्षा करते हैं, वर्षा की आवश्यकता का अनुभव करते हो ना, तो हाँ हाँ वर्षा तो बहुत जरूरी है। तो ये जो भी वर्षा हो रही है इसको इंद्र करते हैं, वही बादल बन करके बरसते हैं। मेघा तस्य इंद्रस्य आत्ममूर्तय स्व शरीर तुल्य प्रिय मूर्तय इत्यर्थ। ये मेघ है इंद्र की ही साक्षात मूर्ति है, उनके शरीर के समान है। ते मेघा भूतानाम प्रीणनम जीवनम पय अभिवर्षंत। तो ये बादल समस्त प्राणियों के लिए संतर्पक हैं, प्रीणन है। जब वर्षा होती है तभी सब सुखी रहते हैं, स्वस्थ रहते हैं। और यहां तक कि जीवनम, जो फसल मरने हो जाती है, जो पेड़ सूखने लगता है, तो वर्षा होने से पानी बरसने से ये सब जीवित हो जाते हैं, हरे भरे हो जाते हैं, उसको जीवनम कहते हैं। इसीलिए जल का एक नाम ही है जीवन, जल से जीवित रहता है कोई प्राणी। इसीलिए सभी लोग प्राणी नाम जैसे मनुष्य हैं, मनुष्य जल पी करके ही जी रहे हैं, जल न हो तो मर जाएंगे, पानी पीने को न दिया जाए तो मर जाएंगे। अरे पानी जो कुछ भी है ये वर्षा से आ रहा है, वर्षा का पानी है। जीवनम जामुन जीवन केली परायन मानस चंद्र चकोरा, यामुन का अर्थ जमुना का और जीवन माने जल, जमुना के जल में जो विहार करते हैं, ये भगवान का एक नाम है। जामुन जीवन केली परायन मानस चंद्र चकोरा। तो बेटा ये भगवान इंद्र वर्षा करते हैं, इस वर्षा से सभी जीव सुखी रहते हैं और मरे हुए भी घास आदि फिर से जी जाते, उसको जीवनम कहा। घास सूखने लगती है, फसल सूखने लगती है, तो वर्षा होने से ये ताजे हो जाते, हरे भरे हो जाते। तो एक प्रकार से इंद्र भगवान सारी दुनिया को जीवन दे रहे हैं, पानी दे करके सबको तृप्त कर रहे हैं, जिला रहे हैं, सुखी कर रहे हैं। तो ये मेघ ही वर्षा करते हैं, ते अभिवर्षन्ति भूतानां प्रीणनम जीवनम पयः। पयः का विशेषण है प्रीणनम और जीवनम। प्रीणन का अर्थ होता है प्रसन्न करना, तृप्त करना, और जीवन का अर्थ जीवन देना, मरे हुए को जिलाना। अब सलालन संबोधन कर रहे हैं, बेटा लालन पूर्वक बहुत स्नेह से कह रहे, तात मेरे प्रिय पुत्र, वयम अन्य च नराह, वयम मतलब हम लोग, हम गोप और अन्य च नराह, अन्य भी जितने मनुष्य हैं, सर्वे वारी मुचाम पतिम ईश्वरम, मेघों के पति बादल रूपाणाम सूरज रश्मि नाम अपनी सएव ईश्वर इत्यर्थ। तम बादलों के पति ईश्वर, सबके नियंता इंद्र की पूजा हम लोग करते हैं। जब पूछे हो कि किन चीजों से, तद रेतसा सिद्ध ही द्रव्य ही, उनके द्वारा बरसाए हुए पानी से, जब वृष्टि से जो वस्तुएं उत्पन्न होती हैं, अन्न दूध सब कुछ इन्हीं नानाविध द्रव्यों से, द्रव्य साधनों से साधित यज्ञों के द्वारा हम उनकी पूजा करते हैं। तो स्पष्ट हो गया कि हम इंद्र की पूजा कर रहे हैं। और बेटा इसमें हम लोगों का हाय क्या, सब इंद्र के द्वारा ही उत्पन्न किया गया है। जो भी द्रव्य लगता है इस यज्ञ में, ये सब इंद्र का दिया हुआ है। ठीक है, इंद्र के दिए हुए बादल से बादल वर्षा करते हैं, यज्ञ होता है, तो इन यज्ञों से क्रतु ही बहुवचन में है, तो इन यज्ञों से क्या फायदा है बाबा, किस प्रकार के यज्ञ से क्या फायदा है। मान लीजिए हम लोग तो वो वर्षा करते हैं तो हम लोगों को देते हैं, हम लोग जीते हैं, खाते हैं, पीते हैं, लेकिन हम उनको जब यज्ञ के द्वारा चुट देते हैं, इतना जो भोजन बनेगा देंगे, तो वे हमारा क्या उपकार करते हैं, यज्ञों के द्वारा क्या होता है। तब कहा तत्सेण उपजीवंती त्रिवर्ग फल है, तब पुंसाम पुरुष कारणम परजन फल भावना। पुरुष कारणाम, पुरुषार्थ करने वाले लोगों का, मनुष्यों का परजन्य इंद्र ही फल भावना, इंद्र फल देते हैं। कोई भी आदमी काम करे, कुछ भी करे, लेकिन जब तक इंद्र भगवान कृपा नहीं करेंगे, पानी नहीं बरसाएंगे, तो काम सफल नहीं हो पाएगा। पुंसम फल भावना, वृष्टि इंद्र के अधिकार में है, अतः फल उत्पन्न करने वाले भी वही हुए। पुरस्कार कहते हैं पुरुषार्थ को, मनुष्य अपना काम कर सकता है। विशेष करके इसका उदाहरण देखिए, खेती करने वाले लोग, कृषि करने वाले कृषि करते हैं, खेत भी जोतते हैं, बीज लगाते हैं, सब करते हैं, लेकिन पानी न बरसे या नहर आदि से पानी की व्यवस्था न हो, या किसी तरह से पानी की व्यवस्था न हो, तो खेती क्या होगी, क्या पुरुषार्थ करके कोई करेगा, मेहनत करे सब करे, उससे कुछ होगा नहीं। इसीलिए पुरुष कारणम पुंसाम परजन्य फल भावना, दैव ही इंद्र ही प्रधान है फल देने वाले। त्रिवर्ग फल है तवे, त्रिवर्ग धर्म अर्थ काम रूप ये तीन फल हैं, इनके सिद्धि के कारण इंद्र हैं। तो तत्सेण उस यज्ञावशिष्ट अन्न से उपजीवंती, इससे ये फायदा होता है कि अगर यज्ञ किया जाए और उस और यज्ञ और शिष्ट खाया जाए तो उसे तो जीविका चलती ही है और सब कार्य सफल भी होते हैं। भगवान मानो बीच में इंद्र बाबा को टोके, उंगली उठाकर बाबा, यानी हाथ जोड़कर कहते हैं, उंगली दिखाकर नहीं कहता, इधर प्रश्न करने में उंगली दिखाते हैं, तर्जन जिसे तर्जन किया जाता है, आई हैव वन क्वेश्चन, ऐसे ऐसे बोलते हैं, ये कायदा नहीं है। भगवान कृष्ण बोल रहे हैं तो बाबा ऐसे कह करके, एक प्रश्न हमने देखा है कि व्यक्ति सब वृष्टि आदि के द्वारा जीते हैं, वर्षा आदि से सब जीते हैं, कि इंद्र से जीते हैं हमें समझ में नहीं आ रहा है। अरे आखिर वही हुआ ना, वे इंद्र वर्षा करते हैं तो वर्षा से जीते हैं, तो अंततः इंद्र की ही कृपा मानी जाएगी ना। लेकिन बाबा ने कहा नंद बाबा ने, ठीक है तुम कहते हो कि कृषि आदि से हम जीते हैं, लेकिन पानी के बिना, वर्षा के बिना कृषि आदि सब विफल है ना। कभी सूखे हुए धान को देखे हो, घास सूख जाती है, वहां तो वृंदावन में होता नहीं था, वास्तव में भगवान की सृष्टि है, वो दिव्य धाम है। पर्जन्याद वृष्टि, वृष्टि अन्नम, अन्नात जीविका, जीविकातः धर्म, धर्मार्थ उपाय इत्यर्थ। पर्जन्य से वर्षा होती है, वर्षा से अन्न होता है, अन्न माने भोजन। सब चीज घास गाय के लिए अन्न है, बाघ के लिए मांस अन्न है, जो भी है तो पर्जन्य से बादल से वर्षा, वर्षा से अन्न, अन्न से जीविका होती है। और जीविका का अर्थ क्या होता है? जीने का साधन। जिएंगे तब न कुछ करेंगे, पहले जीने का सहारा चाहिए। तो बादल से वृष्टि, वृष्टि से अन्न, अन्न से जीविका, और जी करके तब तो धर्म का काम करेंगे। धर्म काम अर्थ जो भी है उसका उपाय कर सकेंगे। अतः पर्जन्य ही त्रिवर्ग का मूल है, ये कहने का आशय। बादल ही मूल है और बादलों के मूल इंद्र हैं, इसलिए इंद्र ही ईश्वर हैं, वही पूज्य हैं, वही भगवान हैं। ये नंद बाबा आदि गोपों का विचार है। और परम ईश्वर अपने आंगन में खेल रहा है, उसका कोई पता ही नहीं है। इसीलिए हम लोग उनकी पूजा करते हैं। अच्छा बाबा ठीक है, और बात समझ रहे। और एक बात बताइए कि यदि इसको कोई नहीं करेगा तो क्या होगा? तब नंद बाबा कहते हैं, यह एनम विसृजेत धर्मम पारंपरिया गतम नरह कामार लोभात भयात द्वेषात सवय नापनोति शोधनम। नहीं करने पर फिर खैरियत नहीं है, नंद बाबा कह रहे हैं। यह नरह, कोई भी व्यक्ति मनुष्य होकर के नहीं करे तो उसको तो बहुत उसका मंगल होगा। पशु पक्षी नहीं करे तो इनको तो बुद्धि नहीं है, न करें, आखिर वे भी जीते हैं इंद्र की ही कृपा से। लेकिन यदि वे न करें, कोई पशु यज्ञ न करे, पूजा न करे, तो कोई बात नहीं। लेकिन मनुष्य हो करके और कोई ईश्वर के महा उपकारी की पूजा न करे तो दोष है। तो यह नरह कामात अदृष्ट विषयात स्वेच्छात हुआ। कामात का दो अर्थ है, अपनी इच्छा से, या कामात का अर्थ है विषय भोगों की इच्छा से। कोई व्यक्ति ये सोचे कि अरे इंद्र है कि नहीं, इसमें क्या प्रमाण है, हम क्यों करें, हम ये सब यज्ञ नहीं करेंगे। कौन देखा है इंद्र को आकर के यज्ञ में खाते हुए, घी पीते हुए? ये तर्क करके अपनी इच्छा से कोई इसको न करे, है ना? कुछ लोगों का ऐसा ही विचार है, अदृष्ट विषय है। आखिर आप कहते हैं ना कि इंद्र की पूजा करनी चाहिए, अब इंद्र है वास्तव में है क्या? और आप लोग ये चीज देते हैं, कभी खाया है, इसको तर्क कहते हैं। बहुत बहुत बड़ा तर्क है। भगवान अभी नहीं कर रहे हैं, लेकिन मान लीजिए नंद बाबा भी तो बुद्धिमान है, सोचते हैं तो कहते हैं, कोई काम से अपनी स्वतंत्र इच्छा से या यज्ञ में जो वस्तु लगेगी, पैसा लगेगा, उसको बचाने के लिए कोई इसको न करे, इसको छोड़ दे, तो इसमें दोष लगेगा, उसका मंगल नहीं होगा। शोभनम न अपनोति प्राप्नोति, शोभनम मतलब सुख है, सुख नहीं मिलेगा, क्योंकि यह धर्म परंपरा से आ रहा है। परम परम, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, चौथा, पांचवा, इसको परंपरा कहते हैं। परंपरा से धर्म आ रहा है, तो इसको कोई काम से न करे। लोभ, लोभात द्रव्य व्यय भाव विषयात, इसलिए छोड़ दे कि इसमें बहुत पैसा लग रहा है, द्रव्य व्यय हो रहा है, और द्रव्य को बचाने के लिए, पैसा को बचाने के लिए कोई नहीं करे, तो उसका भी शोभन नहीं होगा, सुख नहीं मिला। द्वेष, दो प्रकार का द्वेष होता है, इसमें हो सकता है कि देवता से द्वेष और देवता की पूजा करने वाले से द्वेष। द्वेष बस कोई ना करे, देवता के प्रति द्वेष हो जाए कि हम नहीं करेंगे, उनको क्या मतलब है, इसके कारण पूजक बंद किया। और तद उपासक विषयाद्वार, ये देवता की जो पूजा करने वाले हैं, इंद्र के भक्त हैं, उनसे द्वेष करके बंद कर। तो इस तरह से पारंपरिया गतम वृद्धाचार परंपरा प्राप्तम, जिसको बड़े बूढ़े गोपों ने किया है, उस धर्म को कोई नहीं करता है तो एनम धर्मम विसृजेत, अगर छोड़ देता है, त्यजेत सवई शोभनम न आपनोत, वह व्यक्ति इहम अमूत्र च, इस लोक में और परलोक में क्षेम प्राप्त नहीं करता, उसका कल्याण नहीं होता। ये बात नंद महाराज ने कहा, बहुत महत्वपूर्ण बात कहे, बहुत फीड बात कहे वास्तव में। लेकिन इंद्र के स्थान पर वो इस देवता होना चाहिए भगवान, इतनी ही गड़बड़ी हो रही है अब तक कि क्यों इंद्र उस स्थान पर है। लेकिन नंद बाबा ने जो कहा बात, जो बातें नंद बाबा ने कही, वास्तव में बिल्कुल ठीक है। परंतु अब सुने सुखदेव जी क्या कहते हैं। बचो निशम्य नंदस्य तथान्य शाम ब्रजव कसाम इंद्राय मन्यम जनेन पितरम प्राह केशव। इस प्रकार नंद बाबा ने प्रवचन किया और अन्य लोग भी सपोर्ट किए, अन्य शाम च ब्रजव कसाम। नंद बाबा बोल रहे थे, सब कहे ठीक है कि नहीं, बहुत अच्छा बहुत अच्छा, नंद बाबा प्रवचन किए और लोग भी सपोर्ट किए, इसलिए यज्ञ कर रहे हैं, यज्ञ के अधीश्वर है इंद्र, और इन पूजा करने से ही मंगल होगा, नहीं तो अमंगल हो जाएगा छोड़ने पर। पहले लड़का छोड़ने की बात क्यों कह रहा है, कुछ लोग तो ये कहे होंगे चुप रहो, ऐसे पूछ रहे अगर कोई न करे तो क्या होगा, ये निगेटिव हुआ कि बोलने की क्या जरूरत है। लेकिन कृष्ण तो पूछ दिए, तो नंद बाबा कहे कि नहीं करने पर तो बस खाद्य भूसे भर दिया जाए तो महाविनाश होगा। तो ब्रजवासियों की और नंद बाबा की ये बात सुन करके श्री भगवान, जिनको केशव कहते हैं, जो ब्रह्मा जी और शिव जी को भी बस में रखते हैं, ब्रह्मा और शिव जिनके सेवक हैं, ऐसे भगवान बोले अपने पिताजी से और ब्रजवासियों से। क्या उद्देश्य था, इंद्राय मन्युम जनयन, इंद्र के लिए क्रोध उत्पन्न करने के लिए बोले। एक टीकाकार लिखते हैं कि इंद्र के प्रति ब्रजवासियों का, नंद बाबा आदि का भी क्रोध हो, इसके लिए बोले इंद्राय मन्युम जनयन। लेकिन इसका अर्थ है कि इंद्र के प्रति क्रोध उत्पन्न करने के लिए, माने इंद्र को क्रोध हो हमारी बात से और यज्ञ न करने से। यज्ञ बंद कराना भगवान का उद्देश्य था, और उद्देश्य वास्तव में यज्ञ बंद कराना नहीं, इंद्र को क्रोध दिलाना, ये उद्देश्य था, क्रोध हो इंद्र को। स्पष्ट शब्द है, मन्युम का अर्थ है क्रोध, इंद्राय मन्युम जनयन, जनयन माने जन्म देने के लिए, उत्पन्न करने के लिए भगवान केशव इस प्रकार से बात बोले। तो नंद बाबा ने जो बात कहा है, उस बात को जो कि बिल्कुल वैदिक है, सत्य है, वास्तव में उस बात को काटना, इसको अच्छा नहीं माना जाएगा। भगवान बोल रहे हैं इंद्र को क्रोध दिलाने के लिए, यह नहीं था कि वास्तव में चाहते हैं कि देवता की पूजा न हो, ऐसी बात नहीं, क्योंकि स्वयं ही देवता स्थापित करेंगे। इंद्र के स्थान पर गिरिराज गोवर्धन को पूजने के लिए कहे, तो देवता तो स्वीकार कर ही रहे हैं, देवता स्वीकार किए, आराध्य स्वीकार किए। आगे का जो प्रवचन है, मैं इसके लिए सावधान कर रहा हूं कि वह प्रवचन बहुत खतरनाक है भगवान कृष्ण का, बहुत खतरनाक। उसको हेतुवाद कहते हैं। हेतु का अर्थ होता है तर्क, शुष्क तर्क, तर्क द्वारा परास्त करना, कोई ईश्वर नहीं है, कोई भगवान नहीं है, अपना कर्म करना चाहिए, कर्म ही पूजा है, इसी बात को भगवान कहने जा रहे हैं। बहुत सावधानी से सुनना चाहिए, कर्म ही पूजा है, दुकान ही हमारा मंदिर है, ग्राहक ही हमारा इष्ट देव है, यानी ग्राहक की संतुष्टि ही हमारा ध्येय है ना, ये होता है। और हम पुजारी हैं, दुकानदार है पुजारी, ऐसे बोलते हैं ना। और खास करके इस बात को, कर्म करो कर्म करो, कर्म ही पूजा है, इसका मतलब भगवान कृष्ण की भी पूजा पूजा नहीं है। कृष्ण के प्रवचन से ये सिद्ध होगा, कृष्ण के प्रवचन से ही भगवान की पूजा, कृष्ण की पूजा, किसी की पूजा नहीं करना, बस अपना काम धंधा करो, वही जिलाता है, वही खिलाता है, यही बात सिद्ध हो रही। लेकिन वो तत्काल में उसका उद्देश्य था इंद्र को क्रोध पैदा करना। ये ध्यान रखना चाहिए कि भगवान का उद्देश्य क्या था ऐसा प्रवचन करने का जो आगे करेंगे, इंद्र को क्रोध दिलाना, ये इंद्र वर्षा करें खूब और हम पहाड़ उठावें, यही उद्देश्य था भगवान का। यह उद्देश्य नहीं था कि ईश्वर की, भगवान की पूजा बंद कर दी जाए। लेकिन आगे आप सुनेंगे तो ऐसा लगेगा अरे बाप रे बाप, ये आजकल के नास्तिकों का तो उत्साह चौगुना कर देगा, 10 गुना बढ़ा देगा, भगवान ऐसा प्रवचन किए। कभी कभी तो हम सोचते थे कि कथा ऐसे कहेंगे कि इसको हम बिल्कुल न छुए, आगे बढ़ते, लेकिन उसके बिना फिर आनंद नहीं आएगा वो आगे के कार्यक्रम का, ये भगवान जो करने जा रहे हैं। एक श्लोक अभी यहां हम कह देते हैं, श्री भगवान वाच, श्री भगवान ने कहा, अब तक तो हाथ जोड़ करके सब पूछ रहे थे, अब लगे प्रवचन करने सबके बीच में, सब सुनने ही लगे, लोग कृष्ण ही उनके जीवन थे, कृष्ण की एक एक बात उनको बहुत प्रिय लग रही है। कृष्ण बोले, श्री भगवान वाच, कर्मणा जायते जंतु कर्मणैव विलीयते, सुखम दुखम भयम क्षेमम कर्मणैव अभिपद्यते। पिताजी हम तो देख रहे हैं या सुने हैं, सुने भी हैं और देख ही रहे हैं, कर्मणा जायते जंतु, जीव अपने कर्म से जन्म लेता है, कर्मणा एवं विलीयते, और कर्म से ही वो मृत्यु को प्राप्त होता है, विलीन हो जाता है, कर्म से जन्म होता है और कर्म से प्रलय हो जाता है। सुखम दुखम भयम क्षेमम कर्मणा एवं विपद्यते, और किसी भी व्यक्ति को सुख चाहे दुख है या भय या कल्याण अपने कर्म से ही मिलता है। हम नहीं समझते हैं कि इसमें इंद्र कुछ भी कर रहा है, जीरो भी कर रहा है। आप कहते हैं कि ये करता है, वो करता है, ये करता है, लेकिन हम जो साफ सामने देखा जा रहा है वो माने कि अटकलबाजी करे। आप कहते हैं कि ईश्वर है, ये है वो, ईश्वर कहां कुछ करने आता है, कर्म ही सब कुछ, कर्म ही प्रधान है, कर्म से जीव जन्म लेता है, कर्म से मरता है, सुख दुख भय क्षेम सब कर्म से होता है। प्रथमम तावत कर्मवादे न देवान निराकरोति, कर्मवाद जिसको हेतुवाद भी कहते हैं, इसके द्वारा देवताओं का निराकरण भगवान कर रहे हैं। हम देवता नहीं मानते हैं, ऐसे नहीं मानते हैं, भगवान ने नहीं कहा, ये कहते हैं कर्म से सब होता है। वास्तव में भगवान चाहते थे कि ब्रजवासियों के द्वारा इंद्र पूजा न लें। अच्छा, ऐसा मत पित्रादि रूप नित्य परिकराणाम पूजा ग्रहणे को नाम इंद्र की। भगवान ने सोचा कि जो हमारे परिकर हैं, कोई हमारे पिता हैं, कोई माँ है, कोई ऐसे हैं, सब संबंधी हैं, हमारे परिकरों के द्वारा इंद्र पूजा लेने वाला कौन होता है, क्या इसको अधिकार है पूजा लेने का, ऐसा न कह करके भगवान तन्मद हरणम यद्यपि मनसी वर्तते, इंद्र का मद हरना भगवान के मन में था, फिर भी नरलीला पालनाय तद अनु अनुद्घाट्य, नरलीला के पालन के लिए भगवान इसको उद्घाटित नहीं किए कि हमारे परिकरों से क्यों पूजा लेगा, इसको नहीं कहे। तो कर्मवाद के द्वारा अपने पिता के मत को निरस्त करके अपना मत दे रहे हैं, मतलब कर्मवाद स्थापित कर रहे हैं। कर्म से ही सब कुछ होता है, कर्म से, कर्म ही माता है, कर्म ही पिता है, कर्म ही ईश्वर है, इस बात को कर्मवाद कहते हैं। कर्मयोग नहीं, कर्मयोगवाद नहीं, कर्मवाद। तो भगवान कहते हैं अयम जंतु पिताजी, इस संसार में जितने भी जीव हैं, अयम जंतु जीव मात्र का कर्मणा एव जायते, कर्मणा एव विलीयते म्रियते, सुखम दुखम भयम क्षेमम कर्मणा एव अभिपद्यते प्राप्नोति। कर्म से ही सबको सब चीज मिलता है। प्रथमं तावत् कर्म वादेन देवान् निराकरोति कर्मणा इति। हरीश्वर जी कुछ लिखे हैं उसको पढ़ रहे हैं। पिताजी, हे ब्रजवासियों, मैं आप लोगों से बात कह रहा हूं, ये ईश्वर की कल्पना कुछ लोगों ने अपनी अज्ञानमय मति से किया है, ईश्वर है नहीं कोई, ये कर्म ही सब कुछ है। कर्म जीव जीव को जन्म दे रहा है, कर्म जड़ है, वास्तव में ईश्वर फल देता है, भगवान है, ईश्वर है, वह फल देता है। इनको तो कहना चाहिए था कि वो ईश्वर इंद्र नहीं है, मैं हूं सीधा, लेकिन अब भगवान तो लीला कर रहे हैं तो कैसे कहे कि हम भगवान हैं। इसमें भय और क्षेम जो कहा गया वो भी सुख दुख की ही व्याख्या है। हरीश्वर जी लिखते हैं भगवान के वाक्य की व्याख्या करते हैं, सुखम वा दुखम वा धनम अधनता वा सुहृदाम सदास्था अनास्था वा सुहृद परिपदैर वा व्यवहृति ही तथा प्राप्ति अप्राप्ति समभिलसित लसितस्यैव मखिला व्यवस्था मन्ने भवति भूय भोगाय विधितः। पिताजी, इस संसार में सुख दुख धन या निर्धनता, अपने सुहृदों के साथ रहना उनसे प्रेम होना या नहीं रहना उनसे द्वेष होना, या सुहृद पद से जो युक्त है उनके द्वारा जो व्यवहार है, या अभिलषित वस्तु की प्राप्ति अप्राप्ति जो कुछ भी है, ये सारी व्यवस्था मैं ऐसा मानता हूं कि कर्म द्वारा होती है। नहीं तो इस जगत में कोई धनी है, कोई गरीब है, कोई दुखी है, कोई सुखी है, किसी को अपने परिवार में प्रेम है, किसी का विरोध है, ईश्वर क्यों ऐसा कर रहा है? अगर कोई ईश्वर है तो उस ईश्वर को हम नहीं मानते जो किसी को गरीब बनाया, किसी को धनी बनाया, एक समान क्यों नहीं बनाया? ऐसे लोग तर्क आज के युग में देते हैं, आपने सुना होगा ना। हम उस ईश्वर को नहीं मानते हैं कि कितने लोग अस्पताल में पड़े हुए हैं और वो वहां बांसुरी बजा रहा है गोलोक, उसको कोई दुखी नहीं। दुखी अगर उसको, तब हम अपना पिता मानते कि हमारे दुख को देख करके हमारा आंसू पोछने के लिए वो अभी आ जाते। तो इस संसार में इतने लोग दुखी है और फिर भी ईश्वर सृष्टि करके रह रहा है ही नहीं वास्तव में। यह बहुत बुद्धू लोगों का, अज्ञानियों का काम है कि ईश्वर की मान्यता मानना। तो कर्म से ही सब मिलता है, कर्म से ही सुख मिलता है, कर्म से ही दुख मिलता है, कर्म ही धन देता है, चाहे कर्म ही दरिद्रता देता है, सुहृद आदि जो कुछ भी है कर्म देता है। ये कितना थोथा तर्क है भगवान का, कर्म देता है। किसी को पुत्र की प्राप्ति होती है, पुत्र प्राप्त करता है, कौन सा कर्म किया है कि उसको पुत्र मिला है? ईश्वर देता है वास्तव में। और कर्म जड़ है, जड़ चीज फल नहीं दे सकता है। जैसे कोई मान लीजिए रेलवे में नौकरी कर रहा है या कहीं कोई काम कर रहा है, तो उसको जो फल मिल रहा है वेतन खिड़की पर, महीना पूरा होने पर, वो कर्म नहीं दे सकता है। ऐसा नहीं को काम किया, मान लीजिए रेलवे के पटरी पर काम किया, कुछ किया और इसके बाद बस नोट उसके पास चला जाए। नोट देने वाला, पैसा देने वाला कोई अधिकारी है और वो निश्चित करता है कि कितना महीना मिलेगा, वो निश्चित करता है कब मिलेगा, है कि नहीं? वो अधिकारी है, कर्म करने से क्या होगा? लेकिन भगवान के सामने कौन बोले? हाँ, वो बाद में आएगा। वो तो हरिश्री जी गिना रहे कि सब कर्म से मिलता है, भगवान की बात की व्याख्या कर रहे हैं। पत्नी संस्कृति तारिणी गुणवती पुत्र कुलोद्धार को वर्षमा नाम आमयम इष्ट अन्न मुचितम वासोपि पश्वादय विद्या द्रव्य अजात शत्रु वसति पूर्णायु रेतद ध्रुवम प्रारब्धैक निदान मेत दवनो नैवानु मन्यत कह। फिर भगवान कहते देखिए संसार में जो कुछ मिलता है सब कर्म से मिलता है, अपने भाग्य में जो लिखा है मिलता है, लेकिन भाग्य का मतलब है पहले के कर्म का फल, ये वो कहते हैं। किसी किसी को पत्नी बहुत अच्छी मिलती है, संस्कृति तारी सब दुख से उबार लेने वाली, जन्म मृत्यु से बचाने वाली पत्नी किसी किसी को मिलती है। तो पत्नी संस्कृति तारिणी गुणवती, गुणवती पत्नी का मिलना, अच्छी पत्नी का मिलना, पुत्र कुलोद्धार को, कभी कभी बेटा किसी को ऐसा मिलता है कि पूरे कुल का उद्धार कर देता है, बहुत अच्छा बेटा होता है। और वर्षम अनामय, किसी किसी का शरीर निरोग होता है, शरीर में रोग नहीं होता है, तो वह भी अपने कर्म का ही फल है। कर्म के फल से अच्छा शरीर मिलता है, निरोग मिलता है, कर्म के फल से अच्छी पत्नी मिलती है, बेटा अच्छा मिलता है। और इष्टम अन्नम उचितम, इष्टम अन्नम और भोजन भी जो आदमी चाहता है वो मिलता है, वो कर्म किया है अच्छा तो मिलता है, अच्छा तो अन्न मिलता है। और उचितम वास, गांव घर मकान भी उसको अच्छा मिलता है। पश्वादय, पशु आदि भी मिलते हैं, रहते हैं। विद्या द्रव्य मजात शत्रु वसति, विद्या द्रव्य मतलब धन रुपया पैसा, और अजात शत्रु वसति, और जहां वो रहता है वहां उसका कोई शत्रु नहीं है। पूर्णायु और पूर्ण आयु, 100 वर्ष की जिंदगी या उससे भी अधिक। ध्रुवम प्रारब्धिक निदान में तो दौनो, इस पृथ्वी पर सब प्रारब्ध के अनुसार ही मिलता है, इसमें कोई संदेह नहीं। ध्रुवम प्रारब्धिक निदान में अवनव नैवान मान्य, कौन ऐसा है जो इस बात को नहीं मानेगा कि सब कुछ अपने कर्म से मिलता है। और देखिए कर्म नहीं है, ललाट में नहीं लिखा है तो नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, और जो लिखा है मिल करके रहेगा, इसको हरीश्वरी जी कह रहे हैं, ये भगवान की बातों को सपोर्ट कर रहे हैं। विधौ सती च केवल स्फुट ललाट लेखे भवत अभिप्सितम अनिष्ट तो अपि अरम इष्ट तो प्यान्य था स राहु रगमत सुधा भोगपी जत तदा पंचताम पिबन नपि विषम भवो भूय बभू मृत्युंजय। कर्म में लिखा है तो वो अनुकूल फल मिलेगा ही, और कर्म में नहीं लिखा है तो अच्छा नहीं मिलेगा। देखिए राहु अमृत पीने चला, पीने नहीं चला, पी भी लिया अमृत, लेकिन लिखा नहीं था भाग्य में अच्छा, तो उधर अमृत पीना, उधर सुदर्शन चक्र खट से गला काटे। अमृत पीने से क्या होगा? अमृत पीने से कोई अमर हो जाता है, लेकिन कर्म जब जीने का नहीं है, प्रारब्ध जिसको कहते हैं, जो पहले का कर्म है, वो कर्म अमृत को ही विफल कर दिया। बेचारा ऐसे कटोरी लेकर के पी रहा है, पिया अमृत पिया भी, तब तक गला काट दिया गया और अमृत मुंह से जो निकला वो छर 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 देह पर गिरा, ऐसे मुंह का कटा हुआ। तो बताए जो व्यक्ति अमृत पीने चला, पी करके भी पंचता को प्राप्त किया, मृत्यु को प्राप्त किया, और उसके ठीक विपरीत देखिए जिनके पास कुछ नहीं है, और उल्टे वहीं पर देखिए कि उसी समुद्र मंथन में शिव जी पहले विष पिए और विष पी करके भी मृत्युंजय है, मृत्यु को जीतने वाले अमर है, इनका कर्म है, भाग्य में लिखा था। यही फायदा है कि भगवान शिव के भाग्य में लिखा था, तो विष पी करके भी वे मृत्युंजय हैं, बल्कि उनका भजन करने वाला मृत्यु को जीत लेता है। तो वे ऐसे हैं, विष पिए फिर भी नहीं मरे, और वो अमृत पी करके उसी समय मर गए। सब क्या कहा जाए, अपने भाग्य का खेल है, इसमें ईश्वर क्या कर रहा है। उसमें तो ईश्वर ही मारा चक्र से ना। लेकिन भगवान को अपनी बात कहनी, और वे बेचारे भोले भाले गोप, और बोलने वाले वो भगवान। हरिश्री जी लिखे हैं कि इस संसार में सबसे सीधे साधे कोई है मनुष्यों में, तो वे बेचारे गोप हैं। गाय के संग रहते रहते गाय जैसा भोला भाला होते हैं, उनके बुद्धि को कोई भी इधर उधर कर सकता है। तो भगवान को आसानी से इंद्र की पूजा रोकने का अवसर मिल गया, गोपों को समझा रहे थे। अरे सब अपने कर्म से आदमी जीता है मरता है, इसमें ईश्वर क्या कर रहा है, सीधा कह दिया उन्होंने। तो इसको कौन नहीं मानेगा, और वो भी कलयुग में इस समय। अरे बात, इस समय तो ये बात तो वैसे लोगों को हरी भरी कर देगी जैसे सुखत धान पड़ा जिन पानी, सूखते हुए धान में फसल में पानी पड़ जाए तो हरा भरा हो जाता है, तो अज्ञान और बढ़ जाएगा। और जहां अनेक लोग झुंड के झुंड जुलूस निकालते हैं, ये करो ईश्वर को मत मानो, ये मत करो, उनके लिए तो बहुत ही सावन भादो की झड़ी ही लग जाएगी। लेकिन इसको हेतुवाद कहते हैं। हेतुवाद का अर्थ होता है तर्कवाद, तर्क करना। ऐसे इसको समझाया गया है, परंपरा ये है, शास्त्र कहता है चाहे लोक कहता है कि गाय का गोबर पवित्र होता है, पर तर्क करना होगा तो हेतुवाद वाले तर्क करेंगे, अरे भाई जब पशु होकर के भी गाय का गोबर इतना पवित्र है तो पढ़े लिखे संस्कृत जानने वाले ब्राह्मण का गोबर कितना पवित्र होगा। इस बात को अगर कोई मान ले और गाय के गोबर के बदले ला करके ब्राह्मण का गोबर लीपे घर को, तो क्या दशा होगी। भगवान यही कर रहे हैं यहाँ पर, जो बोल रहे हैं कर्म सब करता है, ये करता है, वो करता है, करता है। कर्म जड़ है वास्तव में, कर्म कुछ नहीं करता है। पर ठीक है, भगवान की बातों की व्याख्या हो रही तो उसी की व्याख्या होनी चाहिए। और पिताजी, आप इंद्र को कहते हैं कि इंद्र हमारी पूजा लेते हैं, आप ऐसे बात मैं पूछता हूं कि इंद्र पूजा लेते हैं, कहीं आपके द्वारा दिए गए प्रसाद को खाने के लिए आए कभी? अब उन गोपों को कहना चाहता है कि वो ले लेते हैं, उनके लेने का तरीका दूसरा है, अंगान जस सकलेन्द्रिय वृत्ति मंती, वो ले लेते हैं। लेकिन अब जब कृष्ण ने कहा कि कभी बाबा वो इंद्र रहते कहां हैं, तो कहे बेटा वो स्वर्ग में रहते हैं, और ये स्वर्ग में जो रहेगा वो गोपों का दिया हुआ खाने आएगा, छी छी कैसी बात आप कह रहे हैं, देवता होकर के इतना बड़ा और आप लोगों से चाहता है, वो चाहता है, लेना चाहता है, ये कैसा ईश्वर अपूर्ण है, ये कंगाल है, ईश्वर क्या है? आप गोपों के धन को लेना चाहता है, भोजन यहां से मांग रहा है, इंद्र की बात आप कर रहे हैं, इंद्र खुद ही दुख भोगता है, इंद्र को 1000 भोग है, 1000 आंख है, उसे दुखी होता है। और हमने सुना है कि कभी कभी दैत्य लोग आक्रमण करके छीन लेते हैं स्वर्ग, तो ईश्वर कैसा है जिसको दैत्य हरा देते हैं? हमने सुना था कि बलि महाराज छीन लिए थे स्वर्ग उसका, तो ईश्वर है जिसके राज्य को छीना जा सकता है, जिसको पद से गिराया जा सकता है, वो कोई ईश्वर है? आप लोग किस वहम में पड़े हुए हैं, भ्रम में पड़े हुए हैं। बल कर्मवाद के द्वारा देवताओं का निराकरण कर रहे हैं। आगे वे कहेंगे कि उसकी व्याख्या मैं विस्तार से अभी नहीं कर सकता, दूसरे सिटिंग में करूंगा। भगवान कहते पिताजी ये अग्नि में उष्णत्व, अग्नि जलाता है, तो ये जलाने का भाव अपने आप है ना, जैसे अग्नि का स्वभाव है जलाना और धरणी का, पृथ्वी का स्वभाव है सब चीज धारण करना, जल का स्वभाव है बहना, हवा का स्वभाव है बहना, और बादल में अमृत से भी ज्यादा मधुर जल देने का स्वभाव है। तो पिताजी मैं मानता हूं कि स्वभाव से ही सब हो रहा है, स्वभाव जिसका है उसका है। जैसे टमाटर का स्वभाव है टमाटर पौधे का कि वो थोड़ा छोटा सा होगा, उसमें फल आएंगे, अगर कोई भगवान है तो उसको बरगद जैसा क्यों नहीं बना देता है? अब जरा सोचिए, स्वभाव है उसका उतना बढ़ेगा, आलू का स्वभाव है इतना बड़ा बड़ा होगा, स्वभाव मुख्य चीज है। परंतु मूल बात यह है कि स्वभाव बनाया किसने, किसी वृक्ष के किसी पौधे के स्वभाव को किसने बनाया? भगवान स्वभाव शब्द का नजायज फायदा ले रहे हैं, स्वभाव उसका अपना भाव है, अपनी स्थिति है, अपने आप है वह। ये खुद गीता में कहते हैं असुर लोग की ईश्वर कोई नहीं है जगत का, उसी बात को यहां कह रहे हैं। ईश्वर कौन है, कहां है देखा, सब जैसा है अपने हिसाब से चल रहा है। अगर आप इंद्र को भगवान मानते भी हैं, ईश्वर मानते हैं, यदि कोई ईश्वर आप स्वीकार करते हैं, पहले तो भगवान का ईश्वर है ही नहीं, कर्म ही सब कुछ है, और यदि आप लोगों की दृष्टि में कोई ईश्वर है तो कर्ता रम भजते सोपी, कर्म करने वाले पर वो कंट्रोल करेगा ना, कर्म करने वाला उसके बस में है, क्योंकि जो ईश्वर आप स्वीकार कर रहे हो कर्म रूपी है, कर्म का फल देने वाला है, अन्य कर्मणा, दूसरे लोग कर्म करते हैं तो उसका फल इंद्र देता है। तो पिताजी मैं आपसे एक बात पूछता हूं, जो कर्म करते हैं उनको फल देता है, जो कर्म नहीं करेंगे तो उनको फल नहीं देगा, उनका मालिक नहीं है ना इंद्र? कर्म करने वाले का फल, कर्म करने वाले का ईश्वर है, और जो कर्म न करे तब स्वाभाविक तर्क है कि कोई किसी विभाग में है, जिस मान लीजिए सरकारी विभाग में, उसमें कर्म करता है उसको फल मिलता है, या उसमें कुछ बुरा कर्म करता है कुछ में, और जो उससे डिपार्ट से संबंध ही नहीं रखा है, कोई काम नहीं किया उस विभाग का, तब उसका तो मालिक नहीं हुआ वो विभाग वाला, अपने स्टाफ का अपने कर्मचारियों का मालिक होगा। यदि कर्म न किया जाए तब क्या होगा? परंतु यही भगवान गीता में बोलते हैं कि नहीं कश्चित क्षण अपि जात तिष्ठत कर्म के, बिना कर्म किए क्षण भर भी कोई जीव नहीं रह सकता है, अतः वह ईश्वर के अधीन तो हुआ है, कर्म करेगा ईश्वर के अधीन होगा। ये है कर्मवाद। आज के युग में ये बहुत प्रचलित है, बहुत प्रचलित, बहुत बड़ा प्रचार ही नहीं है बल्कि बहुत विरोध के साथ थी। कुछ मनुष्य ऐसे हैं आज्ञा जो इसका बहुत बड़ा प्रचार करते हैं, खास करके ईश्वर नहीं है इसका प्रचार, और ईश्वर है भी तो वो निराकार है, ये धारणा है। तो ईश्वर क्या है? निराकार चीज किसी को कंट्रोल नहीं कर सकता है, निराकार चीज कंट्रोल नहीं कर सकता है। ईश्वर का अर्थ ही होता है कंट्रोलर, नियामक, नियंता, नियंता नियमन करता है, चाहे उसके नियमन का जो भी उपाय हो लेकिन वो नियमन करता है। ईश्वर, ये लोग कहते हैं ईश्वर सब जगह है, पर ईश्वर निराकार है, उसका कोई नाम नहीं है, कोई रूप नहीं है, न वो बोलता है, न भोजन करता है, न चलता है, न सुनता है। तब तो ये निराकारवादी जो भजन करते हैं इसको तो कभी ईश्वर सुनेगा नहीं, है ना? वो सुनता है ही नहीं। इस विषय पर हमारे साथ एक व्यक्ति की बहस हुई थी दुबई में, वो अजीब ढंग से, वो तो दृश्य हमने देखा है, वो हमसे पूछा तुम हिंदू हो? तो मैंने कहा कि हाँ। हिंदू लोग पत्थर पूजते हैं, हमने सुना है कि स्टोन पूजते हैं, क्या ये सत्य है? तो हमने कहा नहीं, हिंदू लोग पत्थर नहीं पूजते हैं, हम तो हैं ही। तो मैंने कह दिया कि यहां तो इतना पत्थर बिछा हुआ है, मैं तो पैर देकर के सब पर चल रहा हूं, पूजा कहां कर रहा हूं, फर्श बिछा हुआ था तो पत्थर ही पत्थर, और बड़े बड़े ढोका भी जहां तहां रखे हुए थे, वो तो बालू बालू है ना, और जगह से ला करके। वो तो चकित हो गया, क्या कि मैं तो पत्थर पर पैर देकर के चल रहा हूं, हम पूजा कहां कर रहे हैं। नहीं नहीं, मैंने सुना है कि हिंदू लोग पूजा ये ईश्वर को, पत्थर को ईश्वर मानते हैं। नहीं नहीं, हमने बताया उसको कि ईश्वर का रूप शास्त्रों में लिखा गया है, उसको कोई कलाकार उभारता है पत्थर में चाहे लकड़ी में, जैसे जगन्नाथ जी लकड़ी में है, तो लकड़ी में, मिट्टी में, पत्थर में भगवान का रूप है बना करके और वहां पूजा की जाती है। तो वास्तव में भगवान की पूजा हुई, न कि पत्थर की पूजा हुई, पत्थर की पूजा नहीं हुई, पत्थर में भगवान की पूजा है, चाहे फोटो में उस व्यक्ति की पूजा है। तो वो नहीं मान रहा था, तो मैं उससे पूछा, उसके पास बैच था, उसका आइडेंटिटी एयरपोर्ट पर, तो मैं कहा कि यदि आप इस आइडेंटिटी के बिना इसमें आएंगे तो आने देंगे आपको लोग एयरपोर्ट में? कहा नहीं। तो आप ये हैं, बैच हैं, आपकी कीमत उतनी नहीं है जितनी बैच की कीमत है, इसको पहन कर आते हैं तो लोग आने देंगे, नहीं तो नहीं आने देंगे। ऐसा करते 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 बात चलने लगी कि हम अर्चा विग्रह का महत्व में बताने लगा कि भगवान वास्तव में मूर्ति में उतरते हैं हमारी पूजा को स्वीकार करने के लिए, हमारी प्रार्थना को सुनने के लिए, हमारे द्वारा दिए गए भोजन को लेने के लिए, हमारा सुख दुख सुनते हैं, देखते हैं, उसे अर्चावतार कहते हैं। वो नहीं मान रहा था, नहीं मान रहा था, खासकर सुनने पर मैं जोर दिया, भगवद गीता का भी प्रवचन किए हैं भगवान, ऐसे किए हैं, ऐसे बीच बीच में अल्लाह शब्द कह रहा था कि अल्लाह प्रवचन किए हैं कुरुक्षेत्र में, तो ये तो ईश्वर बोलता है, इसे कैसे, जब आकार ही नहीं है तो कैसे बोलेगा सुनेगा। तब तक तो नमाज का टाइम आया वहां पर और वो भी नमाज पढ़ने लगे और सब लोग नमाज पढ़ रहे थे। मैं जप कर रहा था धीरे धीरे, हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम। तो जब नमाज समाप्त हुई तो वे ऑफिसर थे बैठे, मैं टेबल के दूसरे तरफ था बैठा। हाँ ठीक है, तो वो अपने आप चालू किए, मैं तो सोच रहा था कि बंद हो जाए मैं जाऊं दूसरी ओर, लेकिन वो पूछने लगे, हाँ आप कह रहे थे कि भगवान सुनता है, ये करता है वो करता है। हाँ सुनता है, नहीं नहीं भगवान को, भगवान कैसे सुनेगा उसको। तब मैं पूछ दिया उनसे, आप अभी जो नमाज पढ़ रहे थे तो इसमें ईश्वर से प्रार्थना ही कर रहे थे ना, भगवान से कुछ कह रहे थे ना। मैं व्याख्या किया, नमाज का मतलब होता है कि भगवान से, अल्लाह से हम कुछ कहते हैं। हाँ तो कहते हैं, तो आपको विश्वास है वो सुनता नहीं है? जब सुनता नहीं है तो आप पढ़कर क्या करेंगे, इसका क्या बेसिस है कि हम कुछ कह रहे हैं भगवान से और सुनता है ही नहीं? तो आप लोग तब तो बेकार ये सब कर रहे हैं। हाँ तो लगता है सुनता है, तो सुनता है तभी तो करते हैं ना, वो सुनता है तभी तो हम लोग बोलते हैं। तो हमने कहा कि हाँ सुनते हैं, ये अल्लाह सुनते हैं। तो मैं पूछ लिया किस चीज से सुनते हैं, कैसे सुनते हैं वो। तो वो कहा कि तुम कैसे सुन रहे हो? तो मैं कहा मैं कान से सुन रहा हूं। तो ठीक है आगे कहो। अब पकड़ लिएगा, जब हमको कहे कि तुम कैसे सुनते हो तो मैं कहा मैं कान से सुनता हूं। तो मैं इनको कहा कि तब भगवान भी कान से सुनते हैं ना? हाँ जब हम कान से सुनते हैं तो कान से सुनते हैं। तब मैं कहा कि अच्छा ये बताइए भगवान सुनते हैं, आपको विश्वास हो गया ना? हाँ कान है भगवान को, आपके अनुसार अल्लाह को कान है? हाँ बिना कान के कैसे सुनेगा? उसको पता नहीं था कि बिना कान के भी ईश्वर सुन सकता है सब, लेकिन वो कहा कि हाँ बिना कान के कैसे सुनेगा। तो मैं कहा कैसा ईश्वर सुनते हैं इतना सिद्ध हुआ, ईश्वर कभी बोलते भी हैं? तो पहले तो कहते बोलते हुए तो कभी सुने नहीं, लेकिन कोई बात नहीं आप नहीं सुने, ईश्वर बोलना चाहे तो बोल सकता है कि नहीं? हाँ बोल सकता है। तो फिर कैसे बोलेगा? तो तुम कैसे बोल रहे हो? वो ऐसे पूछता था, तो मैं मुंह से बोल रहा हूं। तो चुप हुआ तो मैं कहा कि तब आप मानते हैं ना कि ईश्वर का मुख है ना? हाँ मुख क्यों नहीं है, आखिर बोलेगा कैसे? अच्छा तो ईश्वर को मुख है, कान भी है, सिद्ध हुआ, तो उसको पैर चलने के लिए है कि नहीं? काम कोई करता है, विश्व को बनाया है, तो हाथ है कि नहीं? और आंख भी होगा देखने के लिए सब करने। उस महीने में दिसंबर का महीने था और उसको पसीना आने लगा, हमारी बात सुनकर, क्योंकि वहां के लिए जाड़ा नहीं था, यहां के लिए जाड़ा का दिन था, लेकिन उस मियां साहब को पसीना आने लगा सुनकर के बाद। तो उन्हीं की बातों से, हमने कुछ नई बात नहीं कहा, सारा अंग स्वीकार किया उन्होंने कि ईश्वर का सारा अंग है, सब सब कुछ है दिव्य। तो मैं बताया कि दिव्य है, चिन्मय है, मरने वाला नहीं है, तो है ना अंग। तो वो अपने मुख से कहा कि अब मैं जाना कि हिंदू लोग ईश्वर की पूजा करते, अंत में बात वो माना। अपना फोन नंबर भी दिया, उसके ऑफिस का फोन नंबर था, लिखा भी था बाद में भूल गया। तो जब मैं उससे पूछ दिया अंत में कि क्या टाइम है, मैं मुझे फ्लाइट पकड़ने की चिंता थी, जहाज तो उसके पहले हमसे पूछा था कि तुम इमाम हो, इमाम माने होता है धर्म गुरु, इमाम हो, तो मैंने कह दिया हां। और जब मैं पूछ दिया कि क्या टाइम है, तो पूछा तुम इमाम होकर के घड़ी नहीं रखे हो तो नमाज कैसे पढ़ते हो टाइम से, घड़ी नहीं रखे हो इमाम होकर के भी, तो गिफ्ट शॉप से मैं गया हमको लेकर के और $50 का खरीद करके, $50 का, $50 का एक घड़ी दिया हमको टाइम से नमाज पढ़ने के लिए। व्यक्ति प्रभावित हुआ, लेकिन इसके बाद तो मैं गया नहीं। लेकिन यह एक सत्य सिद्धांत है कि वास्तव में ईश्वर है और उसका आकार है, दिव्य आकार है, सब कुछ दिव्य है, आंख है, नासिका है, नेत्र, सिर है, पैर है, सब कुछ अद्भुत है। अंगानि जस सकलेन्द्रिय वृत्ति मंति पश्यन्ति पान्ति कलयन्ति चिरं जगन्ति। यह मानना धरल है कि ईश्वर निराकार है, यह मान्यता ईश्वर नहीं है मानने के बराबर है। कोई ये स्वीकार करे कि ईश्वर है लेकिन निराकार है, तो वो नहीं मानने के बराबर ही है, वो व्यर्थ ही अध्यात्मवादी होने का नाटक करते हैं लोग। भगवान है वास्तव में सब। तो कुछ लोग ऐसे हैं जो मानते हैं ईश्वर है लेकिन निराकार है, कुछ तो ऐसे हैं ये मानते हैं कि ईश्वर है लेकिन हमको क्या कर रहा है, हमारे साथ क्या उसका संबंध है और हमको उससे क्या फायदा है। कुछ ऐसा कहते हैं ईश्वर को मानने से केवल आज तक झगड़ा हुआ है, लड़ाई हुआ है, इसलिए ईश्वर लड़ाने वाला है। धर्म के विषय में, ईश्वर के विषय में बहुत मतभेद है ना। वो कहते हैं हम सत्य को जानते हैं, हम सत्य को जानते हैं, हम सत्य को जानते हैं, ये जानते हैं। धर्म के चलते बहुत बड़े बड़े युद्ध हुए हैं, आप लोगों ने सुना होगा, हमने थोड़ा सा पढ़ा है, क्रिश्चियन में और मुस्लिम में इतना बड़ा बड़ा युद्ध हुआ धर्म के लिए। हम बड़े हैं, हम बड़े हैं, हम बड़े, तो कुछ लोग कहते हैं ये भगवान को मानना ही लड़ाई का कारण है, अपना काम धंधा करो, ठीक से जियो इंसान बन करके। ऐसे लोग कहते हैं आजकल के लोग, धर्म लड़ाता है, ये नहीं लड़ता है आदमी का अज्ञान वास्तव में धर्म के नाम पर, लेकिन ईश्वर है सत्य है। तो भगवान को तो इंद्र को क्रोध दिलाना था, इसीलिए ईश्वर की सत्ता ही उड़ा रहे हैं, कहते हैं कर्म ही सब कुछ, कर्म की, कर्म ही पूजा है। आजकल लोग कहते हैं कोई भी काम कर रहे हो उसको करो टाइम से, बस वही पूजा है, कर्म ही पूजा है। ये बात अगर मान ली जाए कि कर्म ही पूजा है, तो करते जाओ करते जाओ कर्म करते जाओ, और ऑफिसर से जो वेतन आदि देने वाला है उसे कोई संपर्क ना रखे, तब तुमको मिलेगा कर्म का फल, नहीं मिलेगा। तो कर्म क्या करेगा, जैसे दूसरों को देखा कि भाई कोई आदमी रेलवे की पटरी को सीधा कर रहा है, तो उसको यदि कोई ईश्वर है, कोई ऑफिसर है और उसको का रजिस्ट्रेशन है, वो उसको काम में लगाया है, तब तो कर्म का फल मिलेगा। नहीं जा करके दूसरा व्यक्ति पटरी टरने लगे चाहे कुछ करने लगे, तो उल्टे उसको अपराधी मान करके जेल में बंद कर दिया जाएगा, कर्म करने से क्या होगा। वही कर्म वो भी करता है लेकिन एक सरकार के द्वारा रजिस्टर्ड है, ये ईश्वर की आवश्यकता है। ईश्वर ही कर्म फल देते हैं, न कि कर्म फल देता है, कर्म जड़ है। अगर कर्म फल देता तो वही कर्म करके दूसरे को फल क्यों नहीं मिलता है। आजकल तो नौकरी के लिए लोग कितना परेशान है, मर रहे हैं, अगर कर्म फल देता है जाकर के करो, ऐसे गिट्टी उठा उठा करके टारो चाहे कुछ करो, रेलवे में जाकर के टिकट चेक करने लगो, टीटी चेक करता है हम भी चेक करेंगे, तो करो उल्टे और तुमको चेक करके जेल में भेज देगा। तो कर्म थोड़े फल दे रहा है, कर्म के अनुसार कंट्रोलर फल दे रहा है, ईश्वर फल दे रहा है। लेकिन हाँ करतारम भजते सोते,
कर्म जो करेगा उसी को फल देगा ना, जो नहीं करेगा उसको क्या
देगा। नो भगवान जब लगाई कर रहे हैं बात कर रहे हैं। तो मैं तर्क दिया तो भगवान की बात कैसी है ये वास्तव में, जैसे कोई ये देखे कि ये शंख बजाया जा रहा है, शंख को पवित्र माना जा रहा है, तो पूछे शंख क्या चीज है, तो कोई आदमी कह दे कि एक जीव की हड्डी है, हड्डी है, अरे हड्डी तो अशुद्ध होती है जीव की, इसको क्यों मंदिर में लाया गया है, लाया। जीव की हड्डी को लाया गया, इसे तो अच्छा है कि मनुष्य की हड्डी को लाकर बजाओ। शास्त्र तो कहता है कि मनुष्य की अस्थि अशुद्ध है, अपवित्र है, छूकर स्नान करना चाहिए, शास्त्र जो कहता है वो प्रमाण है ना। लेकिन तर्कवाद में तो कहा जा सकता है कि नहीं नहीं, जब एक जीव की हड्डी इतना पवित्र है, भगवान के मंदिर में बजाया जाता है, तो मनुष्य की हड्डी कितना पवित्र होगी, और वो भी शुद्ध पवित्र पुजारी ब्राह्मण की हड्डी कितना पवित्र है, इसको ले जाकर बोला तो ला करके रख दोगे सब भाग जाएंगे घर से, है ना। तो इसको तर्क कहते हैं, अरे किसने ईश्वर को देखा है, स्वाभाविक पानी होता है, ये होता है। भगवान यहां तक कहे हैं आगे, कहीं कहीं तो ऐसा भी देखा जाता है कि पानी भरा हुआ है समुद्र पर में और फिर भी पानी वर्षा होती है। समुद्र तो कोई इंद्र की पूजा नहीं करता है, अच्छा जो लोग इंद्र की भक्ति नहीं करते हैं वहां भी वर्षा होती रहती है। क्या इंद्र के सबसे बड़े भक्त चेरापूंजी में ही हैं? मान लीजिए भगवान तो ऐसे बोल रहे हैं, जहां इंद्र के कोई भक्त नहीं है उस वहां क्या वर्षा नहीं होती है? जहां ईश्वर को नहीं मानने वाले लोग हैं वहां वर्षा नहीं होती है? तर्क देना तो बहुत आसान है। लेकिन ये बात, ये जो सेक्शन है भगवान का मान्य नहीं है। हाँ वहां से जब बोलते हैं कि हमें गोवर्धन की पूजा करनी चाहिए, हम लोग गोवर्धन से जी रहे हैं, यहां तक ठीक है, गोवर्धन की पूजा किया जाए, यही गौओं को घास देते हैं, पानी देते हैं, इससे हम लोग जीते हैं, हम लोगों का न घर है न वन कोई आवास है न कोई खेत है, ऐसे रहते हैं वन में, इसीलिए हम लोगों को वन और पहाड़ की पूजा करनी चाहिए। तब इसी तरह से सब आदमी ईश्वर को छोड़कर कोई फैक्ट्री की पूजा करे, कोई ट्रैक्टर की पूजा करे, कोई अपने टोकरी की पूजा करे, कोई हंसुआ की पूजा करे, कोई टांगी की कुल्हाड़ी की पूजा करे, ये कोई पूजा है? वो तो भगवान तो मान लीजिए बचा लिए, भगवान है पहाड़ धारण करके, और दूसरा कोई ऐसे होता तो मरा ही होता ना, इंद्र की पूजा छोड़ कर। कई तर्क वितर्क है, हम सिलसिलवार से एक एक श्लोक को पढ़ेंगे। जो बात नंद बाबा ने पढ़ा कहा है वो बात समीचीन है। कई ऐसी बातें भगवान ने कहा कि आप लोग देखा देखी कर रहे हैं कि शास्त्र में लिखा गया है, कोई जरूरी नहीं कि सब चीज शास्त्र में लिखा हो तभी किया जा सकता है। अभी नए लोग जो पढ़े लिखे नहीं है तो ये वेद पढ़ करके तब हरे कृष्ण कहेंगे, आजकल के लोग तर्क करते हैं प्याज लहसुन में क्या दोष है, तो क्यों नहीं खाया जा सकता है? ये कोई मांस थोड़े है। तो प्याज लहसुन में क्या दोष है नहीं दोष है देखना चाहिए कि जब बड़े बड़े लोग अच्छे लोग नहीं खा रहे हैं तो फौल करने लायक कि पूरा वेद शास्त्र उलाटिए पढ़ाइए तब छोड़ेंगे ऐसी बात नहीं है। नंद बाबा कह रहे हैं कि यह परंपरागत धर्म है, हमारे पूर्वजों ने किया है, बेटा हम लोग उसी आचार परंपरा से प्राप्त इस धर्म को कर रहे हैं। तो यह बात जरूर भगवान की फीट है कि मान लीजिए कोई गलत बात स्थापित हो गई हो तो क्या उसी को करना चाहिए? लेकिन नंद बाबा कहते हैं कि यह परंपरा से प्राप्त है, और मान लीजिए परंपरा से प्राप्त कोई बिल्कुल ठीक चीज हो तो उसको केवल परंपरा से प्राप्त है, लौकिक है, इसलिए नहीं करना चाहिए। तर्कवाद क्या है कि देखिए ये पैर से जो मनुष्य चल रहे हैं कुछ लोगों ने ऐसा चालू कर दिया है पूर्वजों ने, बेटर है अब हाथ से चला जाए चाहे सिर से चलना चाहिए, कि रूढ़िवाद है पैर से चलना। मान लीजिए उसकी बातों में पढ़ करके और कुछ लोग सिर से चलना चालू करें कितना चलेंगे? ये कोई शास्त्र में थोड़े लिखा है कि पैर से चलना चाहिए जो शास्त्र में नहीं लिखा है लेकिन स्वभाव से ही परंपरा से आदमी ऐसे चलता है तो उसको थोड़े बदला जाएगा। ये कोई कहे कि पैर को बहुत थका लिए, बहुत दिन चले, अब इसको परेशान नहीं करना चाहिए, अब हाथ से पैर और सिर से बिच्छू की तरह चलना चाहिए, केवल शीर्षासन करते हुए ही चलिए ये कहना ये बहुत लोक के लिए मनोरंजक चीज है, बहुत अच्छी लगती है, सब अपने आप हो रहा है, स्वभाव से हो रहा है, ईश्वर क्या कर रहा है, ईश्वर अगर है भी तो बैकुंठ में मजा ले रहा है, यहां क्या कर रहा है, यहां वाता नहीं है कि यहां बहुत दुख है, ये है वो है। हमसे एक व्यक्ति पूछा कि इस दुनिया में इतने लोग दुखी हैं, कोई अस्पताल में है, कोई ये है वो है, कोई भूख से मर रहा है, और फिर भी आपके भगवान अपने घर में बांसुरी बजाते रहते हैं। तो हम तो कहते क्या आ करके वो भी रोवे गला से गला मिला करके तो पिता कैसे है कि पुत्र इतने दुखी हैं और फिर भी वे बांसुरी बजा रहे हैं, रासलीला कर रहे हैं, वो पिता कैसे है? उनका वो पिता ऐसे ही है, वो चाहे भी रोना तो रो नहीं सकते, दुखी होना चाहे तब भी नहीं हो सकते, वो आनंदमय है। ये लोग चाहते हैं नहीं जो भगवान है वो भी हमारे साथ रोवे तब तो ठीक है, ये हमारा असली नेता है। नंद बाबा की बातें आप विचार करेंगे तो कितना सीधा साधा प्रवचन है। इस संसार को कोई बनाया है ना, पानी की व्यवस्था कर रहा है, प्रकाश की व्यवस्था कर रहा है, उस ईश्वर का भजन करना बहुत जरूरी है, और उसके लिए साल में एक बार यदि यज्ञ किया जाए कौन ज्यादा है, साल में एक बार उसकी आराधना के लिए प्रसन्न करने के लिए हम लोग करते हैं। नंद बाबा ने भी अपना वास्तविक तर्क दिया कि भाई हम लोग करते हैं इसलिए सब चीज वही भगवान ही दिए हैं, इंद्र भगवान दिए हैं, तो उन्हीं के दी हुई वस्तुओं से ही हम उनकी पूजा करते हैं। अच्छा, केन वा साध्यते मख, इसका उत्तर नंद बाबा ने दिया कि इंद्र के द्वारा दी गई वस्तुओं से ही उनकी पूजा होती है। ये जब ठीक हो गया, कृष्ण तो बोलने में बहुत प्रवीण है, बोल करके नंद बाबा को पोट लेना कौन बड़ी बात है, तो पिता थे। लेकिन गोपों का ऑब्जेक्शन हुआ, दो दल बन गया गोपों में, प्रवचन के सारांश पर निर्भर करता है। कुछ लोगों ने कहा कि नहीं दूसरा यज्ञ नहीं होगा, इंद्र का यज्ञ निश्चित हुआ है तो अब रोज रोज यज्ञ ही होता रहेगा। नहीं, कुछ लोगों ने कहा ठीक है इंद्र का यज्ञ हो जाए और बेटा कह रहा है तो इसके लिए भी यज्ञ गोवर्धन पूजा हो जानी चाहिए, ये जो कह रहा है वो भी कोई दिन निश्चित करके कर दिया जाएगा, नंद बाबा ने कहा। तो दूसरे लोग कहे ये रोज रोज यज्ञ ही होता रहे, इतना धन हम लोगों के पास नहीं है, इतना धन नहीं है, आपका बेटा है आप करा, आप रोज जग कराइए, हम लोगों से नहीं होगा, साल में एक बार कर देते हैं यही काफी है। तब कृष्ण जब विवाद सुने दोनों में तो कहते हैं पिताजी जो इंद्र यज्ञ के लिए सामान जुटाया गया है उसी सामान से गोवर्धन की पूजा की जाए, नया जुटाने की कोई जरूरत नहीं, भगवान ने थोड़ा छूट दिया, सहूलियत दिया उन लोगों को, जो इंद्र की पूजा के लिए सामान जुटाया गया है उसी सामान से गोवर्धन जी की पूजा की जाए, नया खर्च में बढ़ाने के लिए नहीं कह रहा हूं। और मैं इसलिए कह रहा हूं गोवर्धन जी बिल्कुल प्रैक्टिकल देवता है, आप लोग देखिएगा कि ये खाएंगे, इंद्र तो कभी आप लोगों का छुआ हुआ खाया नहीं, पहले तो देवता है आप मनुष्य हैं, इस पृथ्वी पर तो पैर भी नहीं देते हैं देवता, आपके हाथ का दिया हुआ खा कैसे सकते हैं। लेकिन गोवर्धन जी इतने बड़े बड़े दयालु हैं कि ये जो भी दिया जाएगा खाते हैं, खाएंगे। जो पूजा वास्तव में की गई, सारा सामान रखा गया गोवर्धन जी के सामने, तो भगवान कृष्ण ब्रजवासियों के साथ इधर से प्रणाम कर रहे थे और उधर गोवर्धन पर्वत का रूप धारण करके चतुर्भुज रूप और बैठ गए। और जब भोग लगाया गया गोवर्धन को तो एक खा नहीं रहे थे, शुरू में तो भगवान कृष्ण थे खा नहीं रहे थे, तो कुछ गोप सखाओं ने निश्चित हल्ला करना चालू किया, उस देवता की पूजा छुड़ा करके ये पत्थर पूजवा रहा है, ये देवता खाएगा, खाने वाला है। तो भगवान ने सोचा कि यदि नहीं खाते हैं तो फिर अश्रद्धा होगी, तो वही गोवर्धन के रूप में प्रकट होकर दूसरे पर्वत के रूप में और चार भुजा से और उठा उठाकर खाना चालू किए। खाने में गोवर्धन तो विशाल थे ना, और ब्रजवासियों को श्री राधा रानी को श्याम सुंदर दिखाई दे रहे थे, ये लोग सब देख रहे हैं कि श्याम सुंदर ही खा रहे हैं और इधर से श्याम सुंदर प्रणाम कर रहे हैं, लेकिन और गोपों को वे पर्वत के रूप में देवता के रूप में दिखाई दे रहे थे आकार वाले, खाने लगे, खा रहे थे तो ऐसे एक ओड़ी उठाए मुख में डाल दिए, इधर से डाल रहे, इतना हाथ से उठा उठाकर खाने लगे, तो कुछ गोप सखा हल्ला किए, अरे साला सब खा जाएगा, ऐसा देवता हमने नहीं देखा, हम तो भूखे रह जाएंगे, हमको छोड़ेगा ही नहीं, ये नहीं करेगा, ये सब खा जाएगा। भगवान ने कहा नहीं नहीं, अरे चुप ऐसे मत बोलो, सब प्रणाम करो प्रणाम करो, कृष्ण स्वयं प्रणाम कर रहे हैं, कृष्ण को कृष्ण प्रणाम कर रहे हैं, स्वयं ही गोवर्धन बने हुए और सब सबके साथ प्रणाम कर रहे हैं, स्तुति कर रहे हैं। ये सब लीलाएं बड़े ही विस्तार से सूरदास जी ने गाया है, उसका कुछ अंश यहां पर हम पढ़ रहे हैं। पृष्ठ 6 पर है, शुरू शुरू में नंद बाबा से याद दिला रही है माँ जसोदा कि अरे पूजा का दिन आया और आप लोग कोई काम नहीं कर रहे हैं। पृष्ठ 6 पर है, नंद महर्षो कहत जसोदा सुरपति की पूजा बिसराई, आप लोग पूजा बिसार दिए, जाकी कृपा बसत ब्रज भीतर जाकी दिनी भई बड़ाई, जिनकी कृपा से आप ब्रज में बसते हैं, जिनकी देने से आपको बड़प्पन मिला है, जाकी कृपा दूध दधि पूरन सहस मथानी मथत सदाई, जिनकी कृपा से इतना दूध दही है और जिन इंद्र की कृपा से आज हमारे गांव में नंदगांव में हजारों मथानी चल रही है, लाखों मथानी चलती है, दही मथा जाता है। जाकी कृपा अन्न धन मेरे, जाकी कृपा नवो निधि आई, जाकी कृपा पुत्र भय मेरे, कुशल रहो बलराम कन्हाई। जिनकी कृपा से हमको पुत्र मिला, जिनकी कृपा से बलराम और कृष्ण ठीक से हैं। सूर नंद सो कहत जसोदा, दिन आए अब करहूं चढ़ाई। अब दिन आ गया, आप पूजा कीजिए भगवान इंद्र की, उन्हीं की कृपा से सब कुछ मिला है। अपने अपने टोल कहत ब्रजवासिया, भोग भुगति लय चलो इंद्र के आसिया। अपने अपने गांव में, अपने अपने टोले में, परिवार में सब लोग कहने लगे, इंद्र की पूजा का समय आ गया, सब सामान लेकर के चलो। शरद कुब निशिजान दीप मालिका बनाई, गोपन कै आनंद फिरत उन्मद अधिकाई। यह सब तैयारी करते करते दीपावली आ गई, और दीपावली के दूसरे दिन पूजा होती है। घर घर थामे दीजिए घर घर मंगल चार, सात बरस को सांवरो खेलत नंद द्वार। तो घर घर ये सब हो रहा था, दीपक जलाया जा रहा था, मंगल चार हो रहा था दीपावली के दिन, तो सात बरस का सांवला नंद बाबा के द्वार पर खेल रहा था। सात बरस को सांवरो खेलत नंद द्वार, बैठी नंद उपनंद बोली वृषभानु पठाए, सुरपति पूजा देत जानी तह गोविंद आए। तो नंद बाबा ने सबको बुलाया, उपनंद महाराज को, वृषभानु जी को, ये सब बैठे थे। वृषभानु मतलब राधा रानी के पिताजी, सब आकर के बैठे थे। तो खेलते खेलते वहां पर गोविंद आ गए बलराम जी के साथ। संक्षेप में पहले कह रहे हैं, बहुत विस्तार से आगे वर्णन आएगा। बार बार हा हा करही, कही बाबा यह बात, घर घर नेवज होत है कौन देव की जात। कान तुम्हारी कुशल लागी एक मंत्र उपई हो, सटरस भोजन साज भोग सुरपति को दई हो। भगवान नंद बाबा ने कहा, बेटा तुम कुशल रहो, तुम्हारी कुशलता के लिए देवराज इंद्र को हम बहुत सटरस भोजन कराएंगे, उसी के लिए बन रहा है, इधर मत आओ, इधर तुम लोग मत छूना। लड़कों को भगा रहे थे नंद बाबा। नंद कहो चुचकारी के जाई दामोदर सोई, बरस दिवस को दिवस है महा महोत्सव होई। चुचकार करके नंद बाबा कहे कृष्ण, बेटा जाओ सो जाओ, तुम जाओ उधर आराम करो, ये साल भर में एक दिन आता है, बहुत बड़ा उत्सव होगा। तब हरि मंत्र विचार तुरंत गोपन सो कीन हूं, एक पुरुष मुही आई आज सपनों निसी दिन हूं। तो गोविंद ने कहा, बाबा ब्रजवासियों मैं आज एक सपना देखा हूं, आपको सुनाने आया हूं। एक सपना देखा, सपना में एक पुरुष आया हमारे पास, सब देवन को देवता गिरिगो वर धनराज, ताही भोग किन दीजिए सुरपति को कहा काज। तो देवता आए, मैंने देखा कि गोवर्धन पर्वत ही देवता बन गए, तो गोवर्धन पर्वत देवता में सबसे श्रेष्ठ हैं, उनको ये सब भोग दीजिए सुरपति को कहा काज। इसमें देवराज इंद्र से क्या लेना देना है। बाढ़े गोसुत गाय दूध दधि को जह कहां लेखो, यह पर वो विद्यमान नैन अपने किन देखो। जो भी गाय पुत्र या दूध दही बढ़ा है गोवर्धन के कारण, यह उत्सव हो और मैं अपने आंख से देखना चाहता हूँ। तुम देखत बलि खाई गो मुह मांगे फल दे, आप लोग देखेंगे कि आप लोगों के देखते देखते आंख के सामने गोवर्धन जी खाएंगे और आप लोगों को मुह मांगा फल देंगे, आशीर्वाद देंगे। गोप कुशल जो चाहिए गिर गोवर्धन से, अगर कुशल चाहिए तो गोवर्धन की आप लोग पूजा कीजिए सेवा कीजिए। गोपन कियो विचार प्रकट सब हिनमिल साजे, बहुविधि लय पकवान चले संग बाजन बाजे। कृष्ण की बात सुन करके गोप सब मिल करके और बहुत सामान ले चले गोवर्धन जी के लिए, साथ में बाजे बज रहे थे। इक तो बन ही बन चले एक जमुना तट भीर, एक न पैण पावही उमड़े फिरत अहीर। कोई कोई जमुना जी के किनारे किनारे चले, कोई दूसरे रोड से चले, बन ही मन जा रहे थे। इतने फूले हुए थे सब अहीर लोग, गो ग्वाप ग्वाल लोग, कि उनका पैर जमीन पर नहीं पड़ रहा था। ये आनंद में गोवर्धन की पूजा करने जा रहे थे। एक घर ते उठी चले एक घर को फिर जाही, गावत गुण गोपाल ग्वाल उमगे न समाही। कोई घर जा रहे है, कोई घर से आ रहे थे, इधर उधर सब सामान जुटा रहे थे। गोपन को सागर भयो, गोपनी को सागर भयो, गिरि भयो मंदर चार, रत्न भय सब गोपिका कान्ह बिलो वनहार। गोपों का अगर देखा जाए तो समुद्र की तरह जमा हो गए, और गिरि गोवर्धन मंदर पर्वत की तरह थे, चारों ओर मनुष्य मनुष्य गोप, और उसमें रत्न क्या हुई, जैसे समुद्र मंथन से रत्न निकले थे, तो रत्न हुई सब गोपिका। कान्ह बिलो वनहार, ऐसा लगता था कान ही मथ रहे हैं। पहले मथे थे समुद्र को, अभी समय गोपों को मानो मथ रहे। मथने का भाव है कि गोप इतना इधर उधर दौड़ रहे थे, ये जुटाओ ये करो ये करो, कि लगता था कि समुद्र मथा जा रहा है। और गोपियां चमकती थी गहना पहने हुए, साड़ी पहने हुए, और परम सुंदर शरीर से, तो वो लगता था कि ये सब रत्न है समुद्र से निकले। ब्रज चौरासी कोस फेर गोपन के डेरा, लावे चौवन कोस आज ब्रज राज बसेरा। चौरासी कोस ब्रज है, इसमें चौवन कोस में तो ये ब्रजवासियों का बसेरा था, सब जमा हुए थे जहां तहां रहो। सब इनके मन सांवर दीन है सब निमझार, कौतुक देखन देवता आए लोक विसार। सबके मन में था कि कृष्ण को ही देखेंगे, कृष्ण की बात सुनेंगे, और इस कौतुक को देखने के लिए देवता आए अपने अपने लोगों को छोड़ करके। लीन है विप्र बुलाए यज्ञ आरंभन कीनो, सुरपति पूजा मेटि भोग गोवर्धन दीनो। तो पुरोहित आदि आए ब्राह्मण, और सुरपति को पूजा न दे करके वो सारे सामग्री को गोवर्धन को भोग लगाए। दिवस दिवारी प्रात ही सब मिल पूजन जाए, आनंद प्रीत जो मानही सब देखत बलि खाए। दीपावली बीतने के सवेरे दिवस दिवारी प्रात ही सब मिल पूजन जाए, आनंद प्रीत जो मानही सब देवन बलि जाए, सब देखत बलि खाए। सबके देखते देखते गोवर्धन जी बलि खाना चालू किए थे। प्रथम दूध अनवाय बहुरे गंगा जल डारो, गोवर्धन के एक शिला पर मुखारबिंद पर पहले दूध से स्नान कराए, इसके बाद गंगा जल डाले। बड़ो देवता जानी कान्ह को मतो विचारो, उनको बहुत बड़ा देवता समझे क्योंकि कृष्ण ऐसा मत दिए थे। जैसे है गिरिराज जू तैसो अनको कोट, मगन भय पूजा करे नर नारी बड़ छोट। जितना गिरिराज जी बड़े थे इसी तरह से अन्न का भी पहाड़ हो गया, भात या पूड़ी या जो कुछ भी है सब पहाड़ जैसा टंगा हुआ था। खीर दाल ये सब बहुत भारी भारी बर्तन में रखे थे, कुंड जैसे दिखाई देते, दाल का कुंड था, खीर का कुंड था, सब वहां बड़े बड़े बर्तनों में, बड़े या छोटे बालक वृद्ध सभी मग्न हो गए इस पूजा को देखकर। सहस भुजा गिरी धरे करे भोजन अधिकारी, हजारों भुजा प्रकट करके गोवर्धन जी खा रहे थे। नख सिख एक अनुहार मनो दूसरो कन्हाई, और ऐसा लगता है कि कृष्ण एक दूसरे कृष्ण हैं। राधा सो ललिता कहे चलहू देखिए जाए, गहे अंगुरिया नंद की ढोटा भोजन खाए। राधा रानी कहते देखो सखी चलो चलो चलो, नंद बाबा की अंगुली पकड़े हुए कृष्ण खा रहे हैं, मैं देख रही हूं। गोवर्धन जी डायरेक्ट कृष्ण हैं। राधा सो ललिता कहे चलो हूं देखिए जाए, राधा रानी से श्री ललिता जी कहते हैं चलो देखने, गहे अंगुरिया नंद की ढोटा भोजन खाए। जो भोजन गिरिराज कर रहे थे तो उस समय यही दिखाई दिया ललिता जी को, कृष्ण भोजन कर रहे हैं और एक हाथ से वो नंद बाबा को पकड़े हैं। पीत दुमाली बने कंठ मो तिनकी माला भूषण भुजा अनुपम झलमल करनायन विशाल, कृष्ण का वर्णन कर रहे हैं। श्याम की शोभा गिरी भयो गिर की शोभा श्याम, जैसे पर्वत भात को ढिंग भैया बलराम। तो श्याम की शोभा गिरी भयो, गिरी को शोभा श्याम, श्याम से गिरी की शोभा हो रही है, गिरी से श्याम की शोभा हो रही है, और जैसे पर्वत भात को ढिंग भैया बलराम, और बलराम जी निकट थे और भात का पर्वत बन गया था। जैसी कनकपुरी जो दिव्य रत्नन सो छाई, कनकपुरी जो दिव्य रत्नन सो छाई, बलिदीन हो प्रभात छह पूर्व चली आई। चहु और चक्रा धरे चंदही परतर सोई, ठौर ठौर मेहंदी रची बहुविध पूजा होई। जहां तहां दधि धरो कहां कहा उज्ज्वलताई, उदधि शिखर वह रहे भात में देह छपाई। कोई कोई चीज समझ में नहीं आ रहा है, ये विधि है। नंदरावला वृषभानु के बदरावला वृषभानु के रही बिलो वनहार, ताकि बल यह देवता लिन्ही भुजा पसार। लय सब गोपन अरपि गोप गोपिन कर जोरे, अग्नित किन्हे स्वाद दास वर्णय कछु थोरे। यही विधि पूजा पूज के गोविंद के गुण गाए, सूरदास सब सो कही लीला प्रकट सुना। नंद ही कहत जसोदा रानी, सुरपति पूजा तुम ही भुला। बिल्कुल शुरू में एक नंद फिर जसोदा को, यह नहीं भली तुम्हारी बानी, मैं गृह काज रहूं लपटानी। नंद बाबा से कहते हैं आपकी आदत ठीक नहीं है, मैं तो घर के काम में फंसी रही और देवता की पूजा का समय आ गया, भुलवा दिए। लोभ ही लोभ रहे हौ सानी, देव काज की सुधि बिसरानी। आप लोभ में पड़े हैं, काम धंधा है सब, देवता की पूजा बिसार दिए। महरी कहती पुनि पुनि यह बानी, पूजा के दिन पहुँचे यानी। सूरदास जसुमति की बानी, नंद ही खीज खीज पछताने। और नंद बाबा पछताने लगे, या नंद बाबा से कहकर को पछता रहे थी। तो नंद बाबा कह, नंद कहो सुधि भली दिवाई, मैं तो राज काज मन लाए। अच्छा हुआ तुमने याद दिलाया, मैं तो राज काज में फंसा हुआ था। नित प्रति करत यह अधमाई, कुल देवता सुरति बिसराई। मैं यही अधमाई करता हूँ, घर के काम धंधा में पड़ा हूँ और कुल देवता की पूजा बिसार दिया। कंस दई यह लोक बड़ाई, गांव दशक सरदार कहाई। जलधि बुंद ज्यों जलधि समाई, माया जहाँ की तहाँ बिलाई। सूरदास यह कह नंद राई, चरण तुम्हारे सदा सहाय। वहीं से करने कहने लगे, पूजा विनय करने लगे इंद्र से। कहती महरि तुम तब ऐसी बानी, इंद्र ही की दीन ही रजधानी। इंद्र ने रजधानी दिया है, सब दिया है, मतलब जसोदा जी कह रही है नंद बाबा से कि सब धन राजधानी इंद्र दिए है। कंस करत तुमरी अति कानी, यह प्रभु की है आशीष वाणी। यहाँ तक कंस भी आपका आदर करता है, ये सब इंद्र का आशीर्वाद है। गोपन बहुत बड़ाई मानी, जहाँ तहाँ यह चलत कहानी। तुम घर मथिये सहस मथानी, ग्वारिन रही सदा दिन बीततानी। तुम उपजतु नहीं के तृण उपजतु नहीं के पानी, ऐसे प्रभु की सुरती भुलानी। इसको बहुत बढ़िया गाया जा सकता है। तो तृण जो उपज रहा है, हजारों मथानी चल रही है, यहाँ ये सब इंद्र की कृपा है जो यशोदा जी कहते हैं। सूर नंद मन में तब यानी सत्य कहती तुम देव कहानी। सूरदास जी कहते हैं कि नंद बाबा ने कहा तुम सत्य कह रही हो, सब इंद्र की कृपा से हो रहा है। एक एक गोप को भेजे नंद बरसाना बुलाने के लिए उनको वृषभानु जी को, और फिर उपनंद को बुलाया गया, सब लोग जुटे। बिल्कुल शुरू शुरू की बात करें। अच्छा, तीसरा जो प्यार है पृष्ठ आठ पर, पूजा सुन तो बहुत सुख की न, भली करी हमको सुख दीन, सुनी बानी सब हिन सुख लीन, बड़ो देवता सब सब दिन को चीन, हम ही ते ब्रजवास बसीन, हम पर अहिर जाति मतहीन, पूजा की विधि करत सब मिली, जैसे ही भांति सदा आई चली, विदा मांग नंद सो गृह आये, घरनी घरनी यह बात चलाए। वृषभानु जी मीटिंग में से इष्ट गोष्ठी से पूजा के बाद सब तय हो गई, तो इसके बाद जा रहे हैं। सूरदास गोपन की बानी, ब्रजनव नारी सबनी यह जानी, ब्रजनर नारी सबनी यह जानी, नंद घर नि ब्रज बधु बुलाई, यह सुन के तुरत ही सब आई। अब यशोदा जी गोपियों को लगा रही हैं इंद्र की पूजा में। कौन काज हम महरी हकारी, तुम नहीं जानती जो वन बहारी। तो जब पूछी गोपियों ने पूछा यशोदा जी किस काम के लिए हमको बुलाए हैं, तो माता यशोदा जी कहती है तुम नहीं जानती हो, तुम भूल गई, केवल तुम्हारी सुंदरता ही बात ज्यादा है, बुद्धि नहीं है। बिहसी कहती कह देती हूँ गोपी, गारी सुरपति पूजा करो संवारी। तो यशोदा जी ने गारी देकर कहा कि इंद्र की पूजा करनी है, तुमको ध्यान नहीं है, देखो हम सब सुरत बिसारी, और हम ही बूझिए गारी। यह कही हर सित नंद भई नंद रान नारी, सखियन बात कही सब प्यारी, इन सूर इंद्र पूजा अनुसारी, तुरत करो सब भोग संवारी। तो सबको यशोदा जी लगा रही कि ऐसे पूजा करो, ऐसे पूजा करो, समान जुटाओ। घर न चले सब कही जसुमति सो, देव मनावती बचन विनती सो। जब सब घर गोपियां गई तो इधर रानी यशोदा इंद्र से विनय कर रही है मन ही मन कि ये बहुत गलती हुई पूजा करने में, मतलब दिन आ गया पूजा कर लेकिन विसार दिए तुम लोग। तुम बिनु और नहीं हम जाने, मन मन स्तुति करत बखाने। हे देवता हे भगवान इंद्र, हम आपको छोड़कर किसी को नहीं जानते हैं। जहा तहा ब्रज मंगल गाने, बाजत ढोल मृदंग निशाने, बहु बहु भांति करती पकवाने, नेवज करी धरी सांझ बिहाने, छुअत नहीं तह देव छुअत नहीं देव काज सलाने, देव भोग को रहत डराने। तो यशोदा जी जो पकवान बन रहा है, पकवान बन रहा है तो उसको किसी को छूने नहीं दे रही है, चाहे कोई गु गोपी। तो छूने देने में डर था कृष्ण आकर के छुएगा, या चोर है खाने का स्वभाव है, कहीं आकर देवता का प्रसाद न खा जाए, भोग न खा जाए, तो उसे कृष्ण को दूर रखा जाता था। सूरदास सम सुरपति सब सुरपति जाने, और कौन ऐसो जी माने, नंद महर घर हो त बधाई, करत सब विधि देव पुजाई। देव पूजा के सारे विधि चल रहा था। नेवज करती जसोदायातुर, आठो सिद्धि घर ही अति आतुर। मैदा उज्जवल करिके छान्यो बेसन दार चनक करी बा तो मैदा उज्जवल मैंने आटा मैदा मैंने आटा गेहूं का आटा पीस करके सब रखा गया था वही छान करके आटा छान करके उसका पकवान बनाना है पुआ सुआ बनाना है सब तो और बेसन दार चनक करी राख बेसन चने की दाल को रखा गया है उसे पीस करके घृत मिष्टान सबय परिपूरन मिली करत पाग को चूर घी में मिष्ठान पकाया जा रहा है और क्या है मिसी करत मिस करके पाग को चूर जो भी मोतचूर आदि बनाया जा रहा है जो भी कदुआ करत मिठाई घृत पक पेठा बन रहा है पेठा खूब बनाया गया कदुआ कहते हैं पेठा को कदुआ करत मिठाई घृत पक रोहिणी करती अन्न भोजन तक्र रोहिणी जी सब भोजन आदि बना रही हैं संग और ब्रज नारी आग लागी भोजन करती है बड़ी सभागी महर करती ऊपर तरकारी और श्री जसोदा जी स्पेशल सब्जी बना रहे हैं जो रति सब विधि न्यारी न्यारी सूरदास जो मांगत जब ही भीतर लय ते भीतर ते लय देती है जो जो मांगता है भोजन के समान ये दीजिए ये डालना है ये बनाना है ये करना है वो करना है तो उसके लिए सब दिया जा रहा है घी बेसन और चीनी आदि जो कुछ भी है सब दिया जा रहा है असली अब तो पढ़ते पढ़ते अब आएगा कृष्ण कहने लगे कि क्या कर रहे हैं आप लोग महर्षि सबय नेवजलय सैतन श्याम छुए नहीं ताको डरपति सब नेवज माने सुरक्षित रख रही है कि श्याम आकर के न छू दे बच्चा न छू दे का नहीं कहती यहाँ जन आवे लड़िकन को यह देव डरावे यहाँ नान पर लड़कों को कहती है यहाँ देवता का है सब देवता कुछ अनिष्ट कर देगा तू भागो भागो यहाँ से श्याम रहे आंगन ही डराई तो कृष्ण भी डर करके भाई छू देंगे तो अनिष्ट हो जाएगा देवता का भोग है तो आंगन में ही रहे घर में नहीं प्रवेश करते थे कभी कभी कृष्ण पूछते थे इतना देवता खाएगा ये क्या चीज बना है भागो यहां से कृष्ण को भगाया जा रहा था श्याम रहे आंग नहीं डराई मन मन हंसत मात सुखदाई मन ही मन हंसते थे भगवान अच्छा ये सब चल रहा है कुछ भी पकवान बने लेकिन भोग लगेगा गोवर्धन को तो भगवान पूछने मैयारी मोही देव दिखाइए इतनो भोजन सब खाइए मैया वो देवता मैं देखना चाहता हूँ इतना भोजन जो खाएगा कैसा देवता है इतना बन रहा है कितने लोग खाएंगे एक देवता है कि पचास है सौ है मैयारी मोहि देव दिखाई है इतनो भोजन सब वह खाई है यह सुनी खीजत है नंद रानी बार बार सुत सो बिरुछान तो नंद रानी थोड़ा झड़प दे रही है क्रोधित हो रही है ऊपर से और हटा रही है कि ऐसी बात न बोलो न यहाँ रहो ऐसी बात न कहो कन्हा तू कत करत श्याम लंगरा ऐसी बात मान बाबा श्याम तुम ये लंगराई क्यों कर रहे हो लंगट ये बदमाशी क्यों कर रहे हो देवता के विषय में इस तरह से पूछते हो कर जो रति अपराध क्षमावती तो अब कृष्ण तो कोई क्षमा नहीं मांगे, माँ यशोदा कृष्ण के बिहाफ में कृष्ण के लिए क्षमा मांग रहे इंद्र से, हाथ जोड़ कर, कर जोरती अपराध क्षमावती बालक को यह दोष मिटावती। बल्कि कृष्ण का हाथ जोड़वा रही अपने हाथ से, जोर करके कहो कि गलती हो गई, ऐसे नहीं बोलूंगा। कह दिए ना कि कितना बड़ा देवता है, पीठ कितना बड़ा है, कितना खाएगा, उसको देवता को दिखाओ हमें। इसी को माँ यशोदा अपराध मान रही है कि ऐसे ही बोलता है। सूरदास प्रभु को नहीं जाने, हंसत चले मन में नरिशान। लेकिन भगवान क्रोधित नहीं हुए, हंसते हुए चले गए। अच्छा माँ ऐसे कह रही, देवता दिखाई नहीं और उल्टे अपराध मान रही। जुवती कहती कान्ह रिस पाए। लेकिन और जुवतियां कहने लगे कि कृष्ण खुश नहीं हुए, रंज हो रहा है, इनको भगाया जा रहा है कि देवता का प्रसाद है मत छुओ। जान दे हुसुर काज बतायो, बार कयाई छुए कहूं भोजन, उनकी पूजा जाने को जन। यह कही कही देवता मनावती। जब गोपियों ने कहा कि कृष्ण क्रोधित हो गया, ना खुश है, तो माँ यशोदा कहती है जाने दो, देवता की पूजा है ना। यशोदा जी ने कहा देवता की पूजा है, जाने दो। यह कहकर फिर देवता को मना रही है। भोग सामग्री धरती उठावत, उनकी कृपा गऊ गण घेरे, उनकी कृपा धाम धन मेरे। ये सब भगवान इंद्र की कृपा से हो रहा है, उनकी कृपा से हमारी इतनी गौएं हैं, उनकी कृपा से हमारा घर है, धन है सब। उनकी कृपा पुत्र फल पायो, देखो श्याम खीजी पठायो। मनुष्य के देखो मैं कृष्ण को डांट करके भगा दी, क्योंकि सब भगवान इंद्र की कृपा से मिला हुआ है, तो इंद्र की पूजा में कोई अपराध न हो जाए इसके लिए मैं कृष्ण को भी डांट कर भगा दी। सूरदास प्रभु अंतर जामी, ब्रह्मा कोटि आदि ब्रह्मा कीट आदि के स्वामी। सूरदास जी कहते हैं कि भगवान कृष्ण ब्रह्मा से लेकर कीट तक सबके स्वामी है, लेकिन फिर भी भगवान को माँ यशोदा डांट करके हटा देती, यहां नहीं छोड़ा है, देवता का पूजा है, भोग इसको नहीं छूना, देखना भी नहीं। देखोगे कहीं लार टपक जाए इधर से। एक बार घटना हुई थी। बताते स्कूल से पढ़ करके मेरे गांव से कुछ लोग आ रहे थे, तो रास्ते में बेर की झाड़ियां हैं, बेर फल की, छोटे छोटे लाल लाल बेर फले थे, तो बेर तोड़ने लगे पांच छह लड़के सब। तोड़ करके वे लोग एक जगह इकट्ठा करने लगे थे, और एक जगह इकट्ठा करेंगे इसके बाद बांटेंगे। एक व्यक्ति को कहा गया कि वहां तुम देखते रहना, शिवजी राय उनका नाम अभी हैं, तो उनको देखा गया। तो बेर इतने सुंदर सुंदर थे उनके दृष्टि में, कैसे देख रहे थे तब तक उनके मुख से लार निकला और बेर पर गिर, और इसके बाद सब लोगों ने रिजेक्ट कर दिया कि अब ये तो तुम खाओ अब, तो सब बांध करके ले गए। तो भाई देवता का अपराध न कृष्ण कर दे, देखेगा लार टपक जाएगा तब क्या होगा। इसलिए माँ यशोदा हटा रही है, इसको खाने की बहुत आदत है, कहीं से किसी का चोरी करके भी माखन खाता है, खाता है। इधर उन लोगों को गोपियों को भी कहा कि इसको आने मत देना, और अपने भी हिफाजत रखती थी, बन रहा था पकवान सब कई प्रकार के। कृष्ण कभी कभी कहते थे भैया मुझे खाने की इच्छा हो रही है, चलो भागो, खाना तो है लेकिन प्रसाद खाओ अभी नहीं अभी नहीं। अब कृष्ण अभी सुरपति पूजा जानी कन्हाई बार बार बुझत नंद राय। कृष्ण जानते थे कि इंद्र की पूजा है, पर नंद बाबा से बार बार पूछते हैं, जो कथा हुई वही कथा आई है। बार बार बुझत नंद राय, नंद बाबा से पूछते हैं कौन देव की करत पूजाई, सो मोसो तुम कहो बुझाई। बाबा किस देवता की पूजा कर रहे हैं, हमको हमको समझाइए। महर कहो तब कान सुनाई, सुरपति सब देवन के राय। तो नंद बाबा ने कहा यशोदा जी के तुम पकड़ो इसको, हटाओ इसको। तो माँ यशोदा बुलाई कृष्ण को और लगी कहने कि वो सभी देवताओं के राजा है, सब देवन के राय, तुम्हारे हित मैं करत पूजा। बेटा मैं तुमको कुशल से रखने के लिए, तुम्हारे हित के लिए देवता की पूजा कर रही हूँ। जाते तुम रहो कुशल कन्हाई, से हे कन्हाई तुम कुशल रहो इसके लिए पूजा कर रहे। सूर नंद कही भेद बताई, भीड़ भव बहुत घर जाऊं सिखाई। घर में बहुत भीड़ हो गई, तुम जाओ खेलो इधर उधर और सबको पकवान बनाने दो। जाहू घर ही बलिहारी तेरी, से जाई सो बहु तुम। मैं तुम पर इच्छा और जाती हूँ बेटा, तुम जाकर के सो जाओ घर में, जाओ जो रोज सोते हो ना वहां सो जाओ। पकवान तो टेंट तान करके जहां तहां हो रहा था ना घेराव करके, घर में इतना पकवान थोड़े बनता है। तुम जाओ घर में सो जाओ, घर में सो जाओ। माँ को सुफुर्सत नहीं थी कृष्ण को सुला रहे, देवता की पूजा के लिए पकवान बन रहा है, जाओ घर पे सो जाओ। मैं आवत हूँ तुम्हारे पाछे, भवन जाऊं तुम मेरे बाछे। मेरे बच्चे तुम जा करके सो जाओ, मैं बाद में आऊंगी। गोपन लीने कान बुलाई, मंत्र कहो एक मन ही समाई। तो कृष्ण कुछ गोपों को बुलाए, ये सब चल रहा था पकवान तभी उनके, और सब लोग जुटे तो कहने लगे आज मैं एक मंत्रणा कर रहा हूं। आज एक सपने को आयो, शंख चक्र भुज चारी दिखायो। आज हमें लगा एक देवता आया हमारे सपना में और उसने चार भुजा दिखाया, चार भुजा में शंख चक्र गदा पद्म धारण किया था देवता। ये ऐसी बातें कह रहे हैं कि इनकी बातें लोग सुने और धीरे धीरे कन्विंस हो जाएं। आज एक सपने को आयो, सपने में कोई आया शंख चक्र भुज चारी दिखायो। मोसो वह कही कही समझायो, यह पूजा किन तुम ही सिखायो। तो सपना में कहने लगा ये पूजा तुम लोगों कौन सिखाया, चार भुजा वाला वो देवता हमको कहने लगा कि पूजा तुम लोगों को कौन सिखाया। इंद्र की पूजा, सूर श्याम कही प्रकट सुनायो, गिरी गोवर्धन देव बताया। और बाद में उसने कहा कि मेरा नाम गोवर्धन है, मैं गोवर्धन पर्वत के रूप में फैला हूं। वो आदमी बताया, वो व्यक्ति देवता बताया हमको सपना में। कृष्ण का यह सब ट्रिक था। यह तब कहन लगे दिविराई, इंद्र ही पूजा पूजो कवन बड़ाई। दिविराई माने देवताओं के राजा, आप लोग क्यों इंद्र की पूजा कर रहे हैं, उस देवता की क्यों नहीं करते हैं जो हमारे सपने में आया था। कोटि इंद्र हम छिन में मारे, वो ये कहा, वो देवता कहा कि हम करोड़ों इंद्र को एक क्षण में मारने वाले हैं, मार देते हैं, इतनी समर्थ है। छिन ही में पुनि कोटि सवारे, क्षण में ही मैं करोड़ों इंद्र की को जन्म दे सकता हूं और संहार कर सकता हूं। जाके पूजे फल तुम पावहूं, ता देव ही तुम भोग लगावहूं। तुम आगे यह भोजन लई है, मुंह मांगे फल तुमको दई है। ऐसो देव प्रकट गोवर्धन, जाके पूजे बाढ़े गोधन। समुझी परी कैसी यह बानी, ग्वाल कही यह कथ कहानी, सूर श्याम यह सपनो पायो, भोजन कौने दे वही खायो। मानु कहो सत्य यह वाणी, जो चाहो ब्रज की राजधानी, तो तुम अपने करनी जमावहु, जो तुम मुह मांगे फल पावहु। भोजन सब खई है मुह मांगे, पूजत सुरपति तिनके आगे। ये भी कहा कृष्ण, बाबा अब तक इंद्र की जो पूजा हुई है तो ब्राह्मणों ने परसा है, पर देवराज इंद्र खाने नहीं आए, पर गोवर्धन खाएंगे और आप लोग सब डायरेक्ट अपने हाथ से दीजिए, ये देवता खाएंगे। भोजन सब खई है मुंह मांगे, पूजत सुरपति तिनके आगे, और इनके आगे आप लोग इंद्र की पूजा करते हैं। मेरी कही सत्य करी मानहु, गोवर्धन की पूजा ठानहु, सूर श्याम कही कही समझायो, नंद गोप सबके मन आयो। इंद्र की पूजा छोड़ करके गोवर्धन की पूजा कीजिए, ये प्रकट होकर के खाएंगे। सुरपति पूजा मेटी धराई, गोवर्धन की करत पूजाई, पांच दिनन सो करी मिठाई, नंद महर घर की ठकुराई। पांच दिन से मिठाई बन रही थी पहले से, वो जल्दी खराब नहीं होती है, और वो भी कोई डलडा फलडा थोड़े खराब हो जाएगा। जाके घर नी महरी जसोदा, अष्ट सिद्ध नव निधि बहुकोटा। जिनके घर की पत्नी जसोदा है, उनके घर में आठों सिद्धि नव निधि सब है। घृत पक बहुत भांति पकवाना, व्यंजन बहु को करे बखाना, भोग अन्न बहु भार सजायो, अपने कुल सब अहिर बुलायो। सहस सकट भरी भर कर भरत मिठाई, गोवर्धन की प्रथम पूजाई। पहले शुरू में तो हजारों हजारों गाड़ी पकवान चला मिठाई लाद करके, और जो है सब तो है ही, जहां तहां पकवान बना, और पकवान हजारों हजारों बैल गाड़ी पर भर करके आ रहा था। भोग अन्न बहु भार सजायो, अपने कुल सब सहस सकट भर करत भरत मिठाई। बाप, हजारों ट्रक तो मिठाई भरा जा रहा है। गिरि गोवर्धन की राजधानी, ठीक है, और बाद में पढ़ा जाएगा। कभी कभी इसे ताल से भी ढोलक से भी गाना चाहिए। मैं तो प्रथम बार पढ़ रहा हूं, पहले कभी पढ़ा नहीं। केवल गोवर्धन पूजा शीर्षक देख करके मैं कहा कि इसको रखना चाहिए। हरे कृष्ण, जय श्री प्रभुपाद।